टायर के 70 भूले बिसरे वर्ष,
टायर के 70 भूले बिसरे वर्ष।
सभी भविष्यवक्ता दुनिया के अंत की पहचान करते हैं।
प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं में से प्रत्येक ने अपने समय की अपेक्षा हमारे समय के लिए अधिक कहा, इसलिए उनकी भविष्यवाणियां हमारे लिए लागू हैं। अब ये सब बातें उनके साथ उदाहरण के रूप में हुईं और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है, जिन पर जगत का अंत आ पहुंचा है। 1 कुरिन्थियों 10:11। उन्होंने वे बातें अपने लिए नहीं पर हमारे लिए सेवा की, वे बातें जो अब तुम्हें उन लोगों के द्वारा बताई गई है जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, जिन बातों को स्वर्गदूत झांक कर देखने की इच्छा रखते हैं। 1 पत्रस 1:12।
बाइबल ने इस अंतिम पीढ़ी के लिए अपने खजानों को संचित करके एक साथ बांध दिया है। पुराने नियम के इतिहास की सभी महान घटनाएं और गंभीर कार्यवाहियां इन अंतिम दिनों में कलीसिया में फिर से घटित होती रही हैं और हो रही हैं। सिलेक्टेड मैसेजेस Book 3, 338-339।
बाइबल की सभी पुस्तकें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में समापन पाती हैं।
प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सभी पुस्तकें मिलती है और समाप्त होती है। प्रेरितों के काम 585।
पृथ्वी ग्रह के निवासियों के लिए अंतिम चेतावनी संदेश का उल्लेख प्रकाशित वाक्य 18 में है।
और इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई, और उसने बड़े बल से ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, महान बाबुल गिर पड़ा है, और दुष्टात्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का ठिकाना बन गया है, क्योंकि सब जातियों ने उसके व्यभिचार के क्रोध की मदिरा पी है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसकी विलासिता की बहुतायत से धनवान हो गए हैं। प्रकाशित वाक्य 18:1-3।
वाक्यांश महान बाबुल रोमन कैथोलिक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, और यशायाह के 23वें अध्याय में महान बाबुल को सूर के रूप में दर्शाया गया है।
सूर का भार, हाय हाय करो हे तर्शीश के जहाजों, क्योंकि वो उजाड़ दी गई है, न कोई घर रहा न प्रवेश। ये बात उन्हें कित्तीम के देश से प्रकट हुई है। शांत रहो हे द्वीप के निवासियों, तुम जिन्हें समुद्र पार करने वाले सीदोन के व्यापारी समृद्ध करते थे, और बड़े जलों से शिहोर का बीज अर्थात नदी की फसल उसकी आय है, और वो जातियों का बाजार है। लज्जित हो हे सीदोन, क्योंकि समुद्र ने, हाँ समुद्र के बल ने कहा है, मैं न पीड़ा सहती हूँ, न बालक जनती हूँ, न जवानों को पालती पोसती हूँ, न कुमारियों का पालन करती हूँ। जैसे मिस्र के समाचार पर होता है, वैसे ही सोर के समाचार से वे बहुत व्याकुल होंगे। तर्शीश को पार चले जाओ, हाय हाय करो हे द्वीप के निवासियों, क्या ये तुम्हारा आनंदमय नगर है जिसकी प्राचीनता प्राचीन दिनों से है? उसके अपने ही पांव उसे परदेश में रहने के लिए दूर ले जाएंगे। ये परामर्श सोर के विरुद्ध, उस मुकुट देने वाले नगर के विरुद्ध जिसके व्यापारी राजकुमार हैं और जिसके सौदागर पृथ्वी के मान्यजन हैं, किसने किया है? सेनाओं के प्रभु ने ये ठहराया है ताकि सब शोभा के गर्व को कलंकित करे और पृथ्वी के सब माननीय जनों को तुच्छ ठहराए। हे तर्शीश की बेटी, अपने देश में नदी के समान निकल जा, अब और बल नहीं रहा। उसने समुद्र पर अपना हाथ फैलाया, उसने राज्यों को हिला दिया। प्रभु ने व्यापारी नगर के विरुद्ध ये आज्ञा दी है कि उसके दृढ़गढ़ नाश कर दिए जाए, और उसने कहा, अब तू और आनंद न करेगी हे उत्पीड़ित कुमारी सीदोन की बेटी, उठ कित्तीम को पार चली जा, वहां भी तुझे विश्राम न मिलेगा। देख कल्दियों का देश, ये लोग थे ही नहीं जब तक असीरियों ने जंगल के रहने वालों के लिए इसे स्थापित न किया। उन्होंने उसके गुम्मट खड़े किए, उसके महल उठाए, और उसने उसे उजाड़ कर दिया। हाय हाय करो हे तर्शीश के जहाजों, क्योंकि तुम्हारा बल उजाड़ दिया गया है। और उस दिन ऐसा होगा कि सोर 70 वर्ष तक एक राजा के दिनों के अनुसार भुला दिया जाएगा। 70 वर्ष के अंत में सोर वेश्या के समान गीत गाएगी, वीणा ले नगर में घूम हे भुला दी गई वेश्या, मधुर सुर छेड़, बहुत से गीत गा ताकि तेरा स्मरण हो। और 70 वर्ष के अंत के बाद ऐसा होगा कि प्रभु सोर पर ध्यान देगा और वो अपनी मजदूरी की ओर फिर जाएगी, और पृथ्वी के मुख पर सब राज्यों के साथ व्यभिचार करेगी, और उसका व्यापार और उसकी मजदूरी प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगी। उसे न तो बटोरा जाएगा और न जमा किया जाएगा, क्योंकि उसका व्यापार उन लोगों के लिए होगा जो प्रभु के सामने रहते हैं, कि वे पर्याप्त खाएं और टिकाऊ वस्त्र पहने। यशाया 23:1-10-18।
बहन व्हाइट लिखती हैं,
पुराने नियम के इतिहास की सभी महान घटनाएं और गंभीर कार्यवाहियां कलीसिया में इन अंतिम दिनों में दोहराई जाती रही हैं और आज भी दोहराई जा रही हैं।
यशाया अध्याय 23 संयुक्त राष्ट्र, पोप पद, संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लाम के भविष्यवाणीगत संबंधों पर प्रकाश डालता है। इन सत्यों को पहचानने के लिए अध्याय के कुछ प्रतीकों को ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा परिभाषित किया जाना आवश्यक है। एक बार प्रतीक परिभाषित हो जाएं, तो घटनाओं का क्रम काफी सरल हो जाता है। इस अध्याय के जिन प्रतीकों को परिभाषित करना आवश्यक है वे हैं
भार, सोर, वेश्या, अश्शूरी, कल्दियों का देश, मीनारे और महल, तर्शीश, सीहोर का बीज, कित्तीम का देश, सीदोन, व्यापारियों का नगर, मिस्र का समाचार और सोर का समाचार, हाहाकार, एक पुत्री, 70 वर्ष, एक राजा के दिन, भूलना और स्मरण करना।
पहली आयत में बर्डन शब्द टायर के राज्य के विरुद्ध विनाश की भविष्यवाणी को दर्शाता है। बोझ H4853-H5375 से एक बोझ, विशेष रूप से खिराज या अमूर्त रूप में माल ढुलाई, रूपक रूप में एक उक्ति, मुख्यतः विनाश का संदेश, विशेषकर गीत के रूप में, मानसिक इच्छा, बोझ उठाकर ले जाना, भविष्यवाणी, एक्स वे ठहराते हैं, गीत, खिराज।
सूर का भार बाइबल के उन अनेक स्थलों में से एक है जहां रोमन कैथोलिक कलीसिया के अंतिम न्याय की पहचान की जाती है। भार शब्द व्यवहार और परिभाषा के अनुसार एक भविष्यवाणी है और मुख्यतः विनाश की भविष्यवाणी। यशायाह में 11 भार हैं और 8 बार ये शब्द कंधों पर उठाए जाने वाले बोझ का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। वे 11 स्थान जहां भार शब्द विनाश की भविष्यवाणी के रूप में आता है ये हैं यशायाह 13:1, 15:1, 17:1, 19:1, 21:1, 11:13, 22:6 और निश्चित रूप से अध्याय 23 जहां हमें सूर का भार मिलता है। ये लाभप्रद होगा कि यशायाह की सभी विनाश संबंधी भविष्यवाणियों को साथ रखकर देखा जाए ताकि आंका जा सके कि अंतिम दिनों में किस शक्ति का प्रतिनिधित्व किया गया है। 11 विनाश संबंधी भविष्यवाणियों को एक साथ लेना कठिन है, इसलिए मैं अध्याय 23 की रूपरेखा बांधने के लिए प्रत्येक ऐसी भविष्यवाणी का संक्षिप्त परिचय दूंगा।
13वें अध्याय में बाबुल के विरुद्ध विनाश की जो भविष्यवाणी है वो संसार के अंत में आधुनिक बाबुल के बारे में है जो रोम की वेश्या है और जिसका चित्रण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 17वें अध्याय में भी किया गया है।
तब उन 7 स्वर्गदूतों में से एक, जिनके पास 7 कटोरे थे, आया और मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस महान व्यभिचारिणी का न्याय दिखाऊंगा जो अनेक जलों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार के दाख मधु से मतवाले किए गए हैं। तब वो मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने देखा कि एक स्त्री अर्गवानी रंग के एक पशु पर बैठी है जो धर्मनिंदा के नामों से भरा था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और वो स्त्री बैंगनी और अर्गवानी रंग के वस्त्र पहने थी और सोने बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में सोने का एक प्याला था जो उसके व्यभिचार की घृणित बातों और अशुद्धताओं से भरा था, और उसके माथे पर एक नाम लिखा था, रहस्य, महान बाबुल, व्यभिचारिणियों की माता और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता। प्रकाशित वाक्य 17:1-5।
मुझे थोड़ा विषयांतर करना होगा। टायर की भविष्यवाणी के अध्ययन का उद्देश्य अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्य सूचक इतिहास को सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के इतिहास के साथ संरेखित करना है। हम ये दिखाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार प्रकाशित वाक्य 13 के मेमने के समान पशु के एक सींग के रूप में है और अंधकार युग से निकलने वाला प्रोटेस्टेंटवाद दूसरा सींग था। जिस क्षण संयुक्त राज्य के प्रोटेस्टेंटों ने पहले स्वर्गदूत के संदेश को अस्वीकार किया, प्रोटेस्टेंटवाद का वो सींग मिलराइट एडवेंटिज्म बन गया। जब ये स्थापित हो जाएगा तो हम दिखाएंगे कि प्रोटेस्टेंट सींग का इतिहास और गणतांत्रिक सींग का इतिहास एक दूसरे के समानांतर चलते हैं और समानांतर भविष्य सूचक विशेषताएँ रखते हैं। आखिरकार वे एक ही पशु पर हैं, जो ये दर्शाता है कि दोनों सींग परस्पर समकालीन हैं। मैं संयुक्त राज्य में कलीसिया और राज्य के इन सींगों के इस समानांतर का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। दोनों अपने अपने तरीके से भूल जाते हैं।
यशाया 23 ये भविष्य सूचक संकेत देता है कि पापसी शक्ति 70 वर्षों तक भुला दी जाती है
और उन 70 प्रतीकात्मक वर्षों में लोग वापसी को तथा ये भी कि अंधकार युग को अंधकार युग क्यों कहा जाता है भूल जाते हैं। कैथोलिक कलीसिया से अलग होने पर प्रोटेस्टेंट सींग का ध्येय वाक्य था बाइबल और केवल बाइबल। वे ये भूल गए कि बाइबल हमें बताती है कि वापसी वास्तव में क्या है। वे उस पवित्र दस्तावेज में निहित संदेश को भूल गए जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और जिसके अग्रणी रक्षक होने का वे दावा करते थे।
जो वचन की समझ में भ्रमित हो जाते हैं, जो विरोधी मसीह का अर्थ समझने में असफल रहते हैं, वे निश्चित ही अपने आप को विरोधी मसीह के पक्ष में खड़ा कर देंगे। अब हमारे पास संसार के साथ घुलमिल जाने का समय नहीं है। दानियल अपने भाग में और अपने स्थान पर खड़ा है। दानियल और यूहन्ना की भविष्यवाणियां समझी जानी चाहिए। वे एक दूसरे की व्याख्या करती हैं। वे संसार को ऐसे सत्य प्रदान करती हैं जिन्हें हर एक को समझना चाहिए। इन भविष्यवाणियों को संसार में साक्षी होना है। इन अंतिम दिनों में अपनी पूर्ति के द्वारा वे स्वयं अपना अर्थ स्पष्ट कर देंगी। प्रेस कलेक्शन 105।
इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला गणतांत्रिक सींग जनता द्वारा और जनता के लिए होना था, पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक उस पवित्र दस्तावेज को भी भूल गए हैं जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। वो पवित्र दस्तावेज संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है और जिस सरकार को जनता के लिए बनाया गया था उसका मूल सिद्धांत चर्च और राज्य का पृथक्करण था। वे उस संविधान का संदेश भूल गए हैं जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और जिसके वे घोषित रक्षक थे।
और ये स्मरण रहे कि रोम का ये दावा है कि वो कभी नहीं बदलता। ग्रेगरी 7 और इनोसेंट 3 के सिद्धांत आज भी रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांत हैं, और यदि उसके पास शक्ति हो तो वो उन्हें आज भी उतनी ही कड़ाई से अमल में लाएगा जितनी पिछली शताब्दियों में उसने किया है। प्रोटेस्टेंटों को बहुत कम अंदाजा है कि वे क्या कर रहे हैं जब वे रविवार के महिमा गंडन के कार्य में रोम की सहायता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखते हैं। जब वे अपने उद्देश्य की पूर्ति पर आमादा है उसी समय रोम अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करने और अपनी खोई हुई सर्वोच्चता को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बार ये सिद्धांत स्थापित हो जाए कि चर्च राज्य की शक्ति का उपयोग कर सकता है या उसे नियंत्रित कर सकता है, कि धार्मिक अनुष्ठानों का पालन धर्मनिरपेक्ष कानूनों द्वारा करवाया जा सकता है, संक्षेप में कि चर्च और राज्य का अधिकार विवेक पर हावी होने वाला है, तो इस देश में रोम की विजय सुनिश्चित है।
ईश्वर के वचन ने आसन्न खतरे की चेतावनी दे दी है। यदि इसे अनसुना कर दिया गया तो प्रोटेस्टेंट जगत को रोम के वास्तविक उद्देश्यों का पता तभी चलेगा जब फंदे से बच निकलना बहुत देर हो चुका होगा। वो चुपचाप शक्ति हासिल कर रही है। उसके सिद्धांत विधायी सभागृहों में, चर्चों में और मनुष्यों के हृदयों में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वो अपने ऊंचे और विशाल भवन खड़े करती जा रही है जिनके गुप्त कक्षों में उसके पूर्व उत्पीड़नों की पुनरावृत्ति होगी। गुप्त रूप से और बिना संदेह उत्पन्न किए वो अपनी शक्तियों को मजबूत कर रही है ताकि जब उसके प्रहार का समय आए वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उसे केवल अनुकूल स्थिति चाहिए और वो उसे पहले से ही मिल रही है। हम शीघ्र ही देखेंगे और महसूस करेंगे कि रोमन तत्व का उद्देश्य क्या है। जो कोई भी ईश्वर के वचन पर विश्वास करेगा और उसका पालन करेगा उसी कारण उसे निंदा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 581।
यदि आप 1950 से पहले प्रकाशित कोई भी शब्दकोश खोज सकते हैं और चटक लाल रंग की स्त्री या प्रकाशित वाक्य 17 के उस वाक्यांश के किसी रूपांतर को देखें तो उन सभी 1950 पूर्व शब्दकोशों में ये ठहराया गया है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया प्रकाशित वाक्य 17 की वेश्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकाशित वाक्य 13 का दो सींगों वाला पृथ्वी का पशु अपने अतीत को भूल जाता है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट वाद का सींग हो या गणतंत्रवाद का सींग। ये दोनों संस्थाएं पोप तंत्र की धार्मिक निरंकुशता और उसके समर्थन में रहे राजाओं की राजनीतिक निरंकुशता के विरुद्ध हुए विरोध से उत्पन्न हुई, या जैसा बाइबल कहती है वे राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया। यशाया 23 पर विचार करने से पहले हम संक्षेप में उन अन्य 10 अवसरों का अवलोकन करेंगे जब यशाया एक विनाश की भविष्यवाणी चिन्हित करता है, क्योंकि 11वां भार वास्तव में यही है।
यशाया का 13वां अध्याय अंतिम दिनों में बाबुल के विरुद्ध संदेश है। बाबुल यद्यपि अंतिम दिनों में कैथोलिक कलीसिया द्वारा नियंत्रित और संचालित होगा, तीन शक्तियों से मिलकर बना है, जो प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में वर्णित हर मगिदोन तक संसार को ले जाती हैं। आधुनिक बाबुल के विरुद्ध अध्याय 13 की विनाशक भविष्यवाणी में 3 शक्तियां प्रस्तुत हैं, बाबुल, लूसिफर और असीरिया, जिनमें असीरिया पशु का, लूसिफर अजगर का और बाबुल झूठे भविष्यद्वक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। असीरिया और बाबुल वे 2 उजाड़ने वाली शक्तियां थीं जिनका उपयोग परमेश्वर ने प्राचीन इसराइल को दंड देने के लिए किया। पहले असीरिया आया और उत्तरी 10 गोत्रों को बंधुआई में ले गया और उसके बाद बाबुल ने यहूदा के दक्षिणी 2 गोत्रों को ले लिया।
इसराइल तितर बितर हुई भेड़ है,
सिंहों ने उसे खदेड़ दिया है। पहले अश्शूर के राजा ने उसे निगल लिया और अंत में यही बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियां तोड़ दीं। इस कारण सेनाओं के यहोवा इसराइल के परमेश्वर यों कहता है, देखो मैं बाबुल के राजा और उसके देश को दंड दूंगा, जैसा मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था। यिर्मयाह 50:17-18।
पहले अश्शूर ने इसराइल के उत्तरी 10 गोत्रों को बंदी बनाकर ले गया और उसके बाद बाबुल ने यहूदा के दक्षिणी 2 गोत्रों को बंदी बनाकर ले गया। ये दोनों निर्वासन लेव्य व्यवस्था 26 के 7 बार की पूर्ति थे। लेव्य व्यवस्था का 7 बार वो पहली समय भविष्यवाणी थी जिसे विलियम मिलर ने खोजा था, और ये दर्शाता है कि जब अश्शूर ने उत्तरी गोत्रों को बंदी बनाया तो उसने एक ऐसे बिखराव की शुरुआत को चिन्हित किया जो 2520 वर्षों तक चलता रहा। वो अवधि 723 ईपू में उनके बंदी बनाए जाने से आरंभ हुई और 1798 में अंत के समय पर समाप्त हुई। दक्षिणी गोत्रों को 667 ईपू में बाबुल ने बंदी बना लिया, जिससे यहूदा के विरुद्ध 7 बार आरंभ हुआ, जो दानियेल अध्याय 8:14 की 2034 की भविष्यवाणी के समान बिंदु पर 22 अक्टूबर 1844 को समाप्त हुआ। अश्शूर और बाबुल ने परमेश्वर की प्रजा की बगावत के विरुद्ध दंड के एक ही उद्देश्य को पूरा किया, परंतु दंड पहले अश्शूर द्वारा और फिर बाबुल द्वारा लागू किया गया।
13वें अध्याय में 3 शक्तियों के भविष्य सूचक संबंध में बाबुल अश्शूर का प्रतिरूप है, क्योंकि वो बाद में आई परंतु उसने परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध वही कार्य किया।
15वें अध्याय में मुआब के विरुद्ध जो भविष्यवाणी है वो प्रोटेस्टेंट चर्चों के विरुद्ध है।
मुआब का ये वर्णन उन कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो मुआब के समान हो गई हैं। वे विश्वासी पहरेदारों की तरह अपने कर्तव्य स्थल पर खड़े नहीं रहे हैं। उन्होंने स्वर्गीय बुद्धिमान प्राणियों के साथ सहयोग नहीं किया है, अर्थात उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी परमेश्वर प्रदत्त क्षमता का प्रयोग नहीं किया, अंधकार की शक्तियों को पीछे नहीं धकेला और हमारे संसार में सत्य और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर द्वारा दी गई हर सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया। उन्हें सत्य का ज्ञान है, परंतु उन्होंने जो जानते हैं उसका आचरण नहीं किया है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंटरी, खंड 4:59।
जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया गिर चुकी है वही कलीसिया है जो तब भी प्रभु के साथ चलती रही जब बाकी प्रोटेस्टेंट वाद दूसरे स्वर्ग दूत के संदेश पर भाग खड़ा हुआ। मोआब एडवेंट वाद है जो पतित प्रोटेस्टेंट सींग है।
17वां अध्याय दमिश्क के बारे में है और इसे ऐसे नगर के रूप में पहचाना गया है जो छीन लिया जाता है। एक नगर एक राज्य का प्रतीक होता है और अंतिम दिनों में जो राज्य छीन लिया जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है।
अध्याय 19 मिस्र के विरुद्ध विनाश की भविष्यवाणी है जो संयुक्त राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करता है।
अध्याय 21 में अगली 3 विनाश की भविष्यवाणियां दक्षिण के भयावह मरुस्थलीय प्रदेश दूमा और अरब के विरुद्ध हैं। ये तीनों विनाश की भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक 8:13 की 3 विपत्तियों के अनुरूप इस्लाम को चिन्हित करती है।
अध्याय 22 में विनाश की भविष्यवाणी। रविवार के कानून के समय लाओदिकिया के एडवेंटिस्टों का फिलाडेल्फिया के एडवेंटिस्टों से अलगाव दर्शाती है।
और फिर अध्याय 30 में हम दक्षिण के पशुओं का भार पाते हैं जो लाओदिकियाई एडवेंटिस्टों के विद्रोह का दूसरा उदाहरण है। यशाया के सभी भारों को एक साथ रखने से ये लगभग अंतिम दिनों के हर भविष्यवाणी पात्र को संबोधित करता है। मैं ये प्रदर्शित करने के लिए यशाया अध्याय 23 का चयन कर रहा हूँ कि बाइबल की भविष्यवाणी के 6ठे राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास 1798 से लेकर रविवार के कानून तक शासन करता है।
क्योंकि प्राचीन प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने अपने समय के लिए कम और हमारे समय के लिए अधिक कहा, ताकि उनकी भविष्यवाणियां हमारे लिए लागू हों। इसलिए हर भविष्य सूचक वचन संसार के अंत की घटनाओं को संबोधित करता है। ये सत्य इस तथ्य के साथ मिलकर कि बाइबल की सभी पुस्तकें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिलती हैं और समाप्त होती हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को संसार के अंत की घटनाओं के विषय में भविष्य सूचक गवाही को एक दूसरे के साथ सुसंगत करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में स्थापित करता है।
प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में हम पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करने वाली उस बड़ी वेश्या को और उसके अंतिम न्याय को देखते हैं।
और 7 कटोरे लिए हुए 7 स्वर्गदूतों में से एक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाऊंगा जो बहुत जलों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है और पृथ्वी के निवासियों को उसके व्यभिचार के दाख मधु से मतवाले कर दिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 17:1-2।
पैगंबर कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते
और भविष्यद वक्ताओं की आत्माएं भविष्यद वक्ताओं के वश में होती हैं, क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा कि संतों की सब कलीसियाओं में है। 1 कुरिन्थियों 14:32-33।
संसार के अंत में बहुत से जलों पर बैठी हुई महावेश्या का न्याय, वो महावेश्या जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है, वो महावेश्या जिसने पृथ्वी के निवासियों को अपने व्यभिचार की मदिरा से मतवाला कर दिया है, यशाया द्वारा उस वेश्या के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसे एक राजा के दिनों अर्थात 70 भविष्यवाणी वर्षों तक भुला दिया जाता है। जब वे 70 वर्ष पूरे होंगे तब टायर संसार के सब राज्यों के साथ व्यभिचार करेगी। यशाया की वेश्या ही यूहन्ना की महावेश्या है। यशाया की वेश्या और यूहन्ना की वेश्या रोमन कैथोलिक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्त्री कलीसिया का प्रतीक है।
हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के अधीन रहो, जैसा कि तुम प्रभु के अधीन रहती हो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और वही शरीर का उद्धार करता है। इसलिए जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां सब बातों में अपने अपने पतियों के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, जैसा कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया, ताकि वो उसे वचन के द्वारा जल से धोकर पवित्र और शुद्ध करे और इस प्रकार उसे अपने लिए एक महिमामय कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे, जिसमें न दाग हो, न झुर्री, न ऐसी कोई और बात, परंतु वो पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी पत्नियों से अपने ही शरीरों के समान प्रेम करें। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो अपने आप से प्रेम करता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, परंतु उसे पोषता और संभालता है, जैसे प्रभु कलीसिया को, क्योंकि हम उसके शरीर के, उसके मांस के और उसकी हड्डियों के अंग हैं। इसी कारण पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक देह होंगे। ये भेद महान है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तथापि तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी ये देखे कि वो अपने पति का आदर करे। इफिसियों 5:22-33।
प्रेरित पौलुस बताते हैं कि मसीह की कलीसिया का भविष्यद्वाणिक रूप से एक स्त्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है। इसलिए भविष्यवाणी में स्त्री का अर्थ कलीसिया होता है, परंतु मसीह की कलीसिया पवित्र और निष्कलंक है। एक अपवित्र कलीसिया को अपवित्र स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार यशाया एक व्यभिचारिणी का और यूहन्ना एक वेश्या का उल्लेख करते हैं। वे पोप शाही को एक वेश्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं और परमेश्वर की कलीसिया एक कुवारी है।
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय ईर्ष्या करता हूँ,
क्योंकि मैंने तुम्हारी मंगनी एक पति से कराई है, ताकि तुम्हें मसीह के सामने शुद्ध कुंवारी के रूप में प्रस्तुत करूं। 2 कुरिन्थियों 11:2।
परमेश्वर की कलीसिया को केवल एक कुंवारी के रूप में ही नहीं दर्शाया गया है, बल्कि वो एक ही पति से बंधी है। टायर और जॉन की बड़ी वेश्या पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करते हैं। कैथोलिक चर्च कई पुरुषों से संबंध रखती है, एक से नहीं। डैनियल हमें बताता है कि राजा राज्य है।
ये स्वप्न है और हम राजा के सामने उसका अर्थ बताएंगे। हे राजा, तू राजाओं का राजा है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है,
और जहाँ कहीं मनुष्यों के पुत्र बसते हैं वहाँ के मैदान के पशु और आकाश के पक्षी भी उसने तेरे हाथ में कर दिए हैं और तुझे उन सब पर प्रभुता दी है। तू वही सोने का सिर है और तेरे पश्चात एक और राज्य उठेगा जो तुझसे नीचा होगा और फिर एक तीसरा पीतल का राज्य जो सारी पृथ्वी पर प्रभुता करेगा और चौथा राज्य लोहे के समान दृढ़ होगा क्योंकि जैसे लोहा सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर देता और वश में कर लेता है वैसे ही जैसे लोहा इन सब को तोड़ता है वो भी टुकड़े टुकड़े करेगा और कुचलेगा। दानियल 2:36-40।
दानियल अध्याय 2 में बाइबल की भविष्यवाणी में वर्णित राज्यों की पहचान की गई है और उनकी व्याख्या दी गई है। जब दानियल नबुकदनेस्सर को स्वप्न का अर्थ बताता है तो वो उसे बताता है कि वही सोने का सिर है। सोने का सिर एक राजा है परंतु राजा एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। रोमन कैथोलिक कलीसिया वो बड़ी व्यभिचारिणी है जो भविष्यवाणी के 70 वर्षों के अंत में पृथ्वी के सब राजाओं के साथ व्यभिचार करती है। राजा मनुष्यों के प्रतीक है और सोर एक अशुद्ध स्त्री है। स्त्री कलीसिया है, वेश्या अपवित्र कलीसिया है, पुरुष एक राजा है और राजा एक राज्य है। स्त्री कलीसिया है और राजा राज्य सत्ता है। इन दोनों संस्थाओं का अवैध संबंध आध्यात्मिक व्यभिचार का प्रतिनिधित्व करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक ईश्वरीय दस्तावेज है जो इन दो संस्थाओं को अलग रखने की आवश्यकता को प्रतिष्ठित करता है। यद्यपि हम अभी तक टायर को रोमन कैथोलिक कलीसिया के रूप में पहचानने का कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं, फिर भी इस बिंदु पर यशायाह 23 में एक अन्य प्रतीक पर चर्चा करना उपयुक्त प्रतीत होता है जो पुरुष और स्त्री, कलीसिया और राज्य के प्रतीकवाद की व्याख्या करता है।
कल्दियों का देश देखो, ये लोग थे ही नहीं जब तक अश्शूर ने जंगल में बसने वालों के लिए इसे स्थापित न किया। उन्होंने उसके बुर्ज खड़े किए, उसके महल बनाए और उसने उसे नाश कर दिया। यशाया 23:13।
उस पद में अश्शूरी ने कल्दियों के देश की स्थापना की और मीनारे तथा महल दोनों स्थापित किए। अश्शूरी निमरोद का प्रतीक है और कल्दी लोग बाबुल के रहस्यवादी धर्मों के धार्मिक नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीनार कलीसिया का प्रतीक है। जब यीशु ने दाख की बारी का दृष्टांत प्रस्तुत किया तो सिस्टर व्हाइट ने उस दृष्टांत पर इस प्रकार टिप्पणी की।
दृष्टांत में गृहस्वामी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था, दाख की बारी यहूदी राष्ट्र का और बाढ़ वो ईश्वरीय विधान था जो उन्हें सुरक्षा देता था। मीनार मंदिर का प्रतीक थी। Desire of Ages 569।
असीरियाई ने कसदियों का देश बसाया, जिन्होंने एक चर्च, मीनार और एक महल स्थापित किया। एक महल एक राजा का प्रतिनिधित्व करता है जो आगे चलकर एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। एक राज्य को एक नगर के रूप में भी दर्शाया जाता है।
और उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक मीनार बनाएं, जिसका शिखर आकाश तक पहुँचे और हम अपने लिए नाम करें, कहीं ऐसा न हो कि हम सारी पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। उत्पत्ति 11:4।
असीरियाई ने जो मीनार और महल स्थापित किए वे वही नगर और मीनार हैं जिन्हें निमरोद ने बनाया था।
और उनके शव उस बड़े नगर की सड़क पर पड़े रहेंगे जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रकाशित वाक्य 11:8।
प्रेरणा हमें बताती है कि प्रकाशित वाक्य 11 में महान नगर फ्रांसीसी क्रांति की अवधि के दौरान फ्रांस के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।
महान नगर जिसकी सड़कों में साक्षियों को मार डाला जाता है और जहां उनके मृत शरीर पड़े रहते हैं वो आध्यात्मिक रूप से मिस्र है। बाइबल के इतिहास में प्रस्तुत सभी राष्ट्रों में मिस्र ने सबसे दुस्साहसपूर्वक जीवित परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार किया और उसकी आज्ञाओं का विरोध किया। स्वर्ग के अधिकार के विरुद्ध जितना खुला और उद्दंड विद्रोह मिस्र के राजा ने किया उतना किसी भी सम्राट ने कभी नहीं किया। जब ये संदेश यहोवा के नाम से मूसा द्वारा उसे पहुंचाया गया तो फिरौन ने घमंड से उत्तर दिया, यहोवा कौन है कि मैं उसकी वाणी सुनकर इसराइल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और इसके अलावा मैं इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। निर्गमन 5:2 ARV ये नास्तिकता है और मिस्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राष्ट्र जीवित परमेश्वर के दावों का ऐसा ही इनकार मुखर करेगा और अविश्वास तथा विद्रोह की वैसी ही भावना प्रकट करेगा। महान नगर की तुलना आध्यात्मिक रूप से सदोम से भी की गई है, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने में सदोम का भ्रष्टाचार विशेष रूप से कामुक उच्छृंखलता में प्रकट हुआ, और ये पाप भी उस राष्ट्र की एक प्रमुख विशेषता होना था जो इस शास्त्र वचन के वर्णन को पूरा करेगा। अतः भविष्यद्वक्ता के वचनों के अनुसार सन 1798 से कुछ पहले शैतानी उत्पत्ति और चरित्र वाली कोई शक्ति बाइबल के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगी, और जिस देश में इस प्रकार परमेश्वर के दो साक्षियों की गवाही को मौन करा दिया जाएगा वहां फिरौन की नास्तिकता और सदोम की उच्छृंखलता प्रकट होगी। ये भविष्यवाणी फ्रांस के इतिहास में अत्यंत सटीक और उल्लेखनीय रूप से पूरी हुई है। क्रांति के दौरान 1793 में दुनिया ने पहली बार ये सुना कि सभ्यता में जन्मे और शिक्षित पुरुषों की एक सभा जो यूरोप के सबसे उत्कृष्ट राष्ट्रों में से एक पर शासन करने का अधिकार अपना समझती थी ने मनुष्य की आत्मा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले सबसे गंभीर सत्य का इनकार करने के लिए अपनी संयुक्त आवाज बुलंद की और सर्वसम्मति से ईश्वर में विश्वास और उसकी उपासना का परित्याग कर दिया। सर वॉल्टर स्कॉट, लाइफ ऑफ नेपोलियन, खंड 1, अध्याय 17। फ्रांस दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जिसके विषय में ऐसा प्रामाणिक अभिलेख सुरक्षित है कि उसने एक राष्ट्र के रूप में विश्व के सृष्टिकर्ता के विरुद्ध खुले विद्रोह में अपना हाथ उठाया। बहुत से निंदक, बहुत से नास्तिक इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन और अन्यत्र रहे हैं और आज भी हैं, परंतु फ्रांस विश्व इतिहास में उस एकमात्र राज्य के रूप में अलग खड़ा है जिसने अपनी विधानसभा के फरमान द्वारा ये घोषित किया कि ईश्वर नहीं है, और जिसकी राजधानी की समस्त जनता तथा अन्य स्थानों की भारी बहुसंख्या स्त्री पुरुष समान रूप से ने इस घोषणा को हर्ष के साथ स्वीकार किया और नाच गाकर आनंद व्यक्त किया। ब्लैकवुड्स मैगजीन, नवंबर 1870, महान संघर्ष 269।
प्रकाशित वाक्य 11 में महान नगर वो फ्रांस राष्ट्र था जिसने अपनी विधायी सभा का फरमान पारित किया जिसमें ये घोषित किया गया कि कोई परमेश्वर नहीं है। ये फरमान नास्तिकता की अभिव्यक्ति था जैसा कि फिरौन के विद्रोह द्वारा दर्शाया गया है। एक महान नगर एक साम्राज्य या एक राष्ट्र या एक राज्य होता है। प्रकाशित वाक्य 11 में फ्रांस को दो प्रतीकों मिस्र और सदोम के रूप में दर्शाया गया है।
हमें बताया गया है ये नास्तिकता है और मिस्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राष्ट्र जीवित परमेश्वर के दावों के ऐसे ही इनकार को स्वर देगा और अविश्वास तथा उद्धत विरोध की वैसी ही भावना प्रकट करेगा। वह महान नगर की आध्यात्मिक दृष्टि से सदोम से भी तुलना की गई है। परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हुए सदोम का भ्रष्टाचार विशेष रूप से कामुक उच्छृंखलता में प्रकट हुआ।
फ्रांस के महान नगर या राष्ट्र को प्रतीकात्मक रूप से एक राष्ट्र मिस्र और एक नगर सदोम द्वारा दर्शाया गया है। मिस्र बोलेगा और किसी राष्ट्र का बोलना चर्च कौशल नहीं बल्कि राज्य कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। ये निरूपण कि मिस्र राज्य था और सदोम चर्च था प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में मिलता है।
राष्ट्र का बोलना उसके विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों की कार्रवाई है। महान विवाद 442।
प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में यूहन्ना फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं को भविष्यवाणी के प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। वास्तविक फ्रांसीसी क्रांति ने उस अध्याय में यूहन्ना की भविष्यवाणियों की सत्यता का पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण प्रदान किया। यूहन्ना ने भविष्यवाणी की, फिर फ्रांसीसी क्रांति ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया, और फिर क्रमशः वह भविष्यवाणी और उसकी ऐतिहासिक पूर्ति दोनों संसार के अंत की घटनाओं की पहचान कराती हैं और उनके समानांतर हैं, जब फिर से एक भ्रष्ट राज्य एक भ्रष्ट कलीसिया के साथ मिल जाता है। स्वाभाविक ही उस अपवित्र विवाह के बाद भयंकर रक्तपात होता है। परमेश्वर का राज्य भी एक महान नगर है।
और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने मुझे वो महान नगर पवित्र यरूशलेम दिखाया जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतर रहा था। प्रकाशित वाक्य 21:10।
यहाँ वर्णित दूल्हे का आगमन विवाह से पहले होता है। ये विवाह मसीह द्वारा अपने राज्य को ग्रहण करने का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्र नगर नया यरूशलेम, जो राज्य की राजधानी और प्रतिनिधि है, को दुल्हन मेमने की पत्नी कहा जाता है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। वो मुझे आत्मा में उठा ले गया, भविष्यद्वक्ता कहता है, और मुझे वो महान नगर पवित्र यरूशलेम दिखाया जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतर रहा था। प्रकाशित वाक्य 21:9-10। महान विवाद 426।
निम्रोद का विद्रोह
उसके द्वारा एक मीनार और एक नगर बनाने से प्रदर्शित होता है जो संसार के अंत में कलीसिया और राज्य के सम्मेलन का प्रतीक है, क्योंकि सभी भविष्यद्वक्ताओं ने संसार के अंत के बारे में कहा था। निम्रोद का विद्रोह लूसिफर के विद्रोह की एक निरंतरता भी था, जिसकी इच्छा ईश्वर की कलीसिया और ईश्वर के राज्य दोनों पर नियंत्रण प्राप्त करने की थी।
हे लूसिफर, भोर के पुत्र, तू स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा? तू जो जातियों को निर्बल करता था, भूमि पर कैसे काट गिराया गया? क्योंकि तूने अपने मन में कहा था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से भी ऊपर ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर की ओर सभा के पर्वत पर भी बैठूंगा, मैं बादलों की ऊंचाइयों से ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। यशाया 14:14।
जैसा कि यशाया लूसिफर की परम प्रधान के समान होने की गुप्त हृदय इच्छाओं को प्रकट करता है, वो इंगित करता है कि लूसिफर दो सर्वथा भिन्न आसनों पर बैठना चाहता है। वो अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर ऊंचा उठाना और उत्तर के छोरों में स्थित सभा पर्वत पर भी बैठना चाहता है।
सिंहासन राजा के अधिकार या राज्य के अधिकार का प्रतीक है और उत्तर के किनारे परमेश्वर की कलीसिया है।
कोरह के पुत्रों के लिए एक गीत और भजन।
प्रभु महान है और हमारे परमेश्वर के नगर में उसकी पवित्रता के पर्वत पर वो अत्यंत स्तुति के योग्य है। अपनी स्थिति में अत्यंत सुंदर समस्त पृथ्वी का हर्ष उत्तर की ढलानों पर स्थित सियोन पर्वत महान राजा का नगर है। उसके महलों में परमेश्वर शरण स्थान के रूप में जाना जाता है। भजन संहिता 48:1-3।
यरूशलेम महान राजा का नगर है। इस प्रकार वो परमेश्वर के राजनीतिक सिंहासन को चिन्हित करता है और यरूशलेम उसकी पवित्रता का पर्वत उत्तर के पार्श्वों पर भी है। इस प्रकार वो परमेश्वर के धार्मिक सिंहासन को चिन्हित करता है। आदि से ही शैतान के विद्रोह और युद्ध का चित्रण उसकी इस इच्छा के संदर्भ में किया गया है कि वो परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर की राज्य व्यवस्था दोनों पर शासन करे। इसके बाद शैतान ने निम्रोद के विद्रोह का नेतृत्व किया और कसदियों के लिए जिस देश की स्थापना निम्रोद ने की उसे ऐसे देश के रूप में दर्शाया गया है जहां निम्रोद ने एक मीनार और एक नगर, कलीसिया और राज्य दोनों बनाए।
अतः जब यशाया की वेश्या और यूहन्ना की महान वेश्या पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करती हैं, तो भविष्यवाणी ये दर्शाती है कि 70 भविष्य सूचक वर्षों के अंत में रोमन कैथोलिक कलीसिया और पृथ्वी के राजाओं के बीच एक अपवित्र संबंध स्थापित होता है।
यशाया की भविष्यवाणी अध्याय 23 में वेश्या टायर के न्याय का वर्णन करती है और यूहन्ना उसी न्याय का वर्णन गहरे लाल रंग की एक स्त्री के प्रतीक द्वारा करता है जिसे महान बाबुल के रूप में पहचाना गया है। उसी वेश्या पर उसी न्याय का तीसरा साक्षी इस प्रकार है।
प्रकाशित वाक्य 17 की स्त्री बाबुल का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वो बैंगनी और किरमिजी रंग में परिधान किए हुए है और सोने, बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों से अलंकृत है। उसके हाथ में सोने का प्याला है जो घृणित वस्तुओं और अशुद्धताओं से भरा है और उसके माथे पर एक नाम लिखा था, भेद, महान बाबुल, वेश्याओं की माता। भविष्यवक्ता कहता है, मैंने देखा कि वो स्त्री पवित्र जनों के लहू और यीशु के शहीदों के लहू से मतवाली थी। आगे ये घोषित किया गया है कि बाबुल वो महान नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य 17:4-6-18। वो शक्ति जिसने इतने शताब्दियों तक मसीही जगत के राजाओं पर निरंकुश प्रभुत्व बनाए रखा, वो रोम है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 382।
टायर अंतिम दिनों में रोमन कैथोलिक कलीसिया है। उस समय पापाई सत्ता निकलेगी और पृथ्वी के राजाओं के समक्ष अपने लुभावने गीत गाएगी और इस प्रकार उन राजाओं को व्यभिचार के कार्य में लिप्त कर देगी जो भविष्यवाणी की दृष्टि से कलीसिया और राज्य का संयोजन है।
और उस दिन ऐसा होगा कि सोर 70 वर्ष तक एक राजा के दिनों के अनुसार भुला दिया जाएगा। 70 वर्ष के अंत में सोर वेश्या के समान गीत गाएगा। यशाया 23:15।
बाइबल की भविष्यवाणी में राजा का अर्थ राज्य होता है, इसलिए 70 वर्षों तक शासन करने वाले भविष्य सूचक राज्य के समय में टायर भुला दिया जाएगा।
और उस दिन ऐसा होगा कि सूर 70 वर्षों तक भुला दी जाएगी एक राजा के दिनों के अनुसार। 70 वर्षों के अंत के बाद सूर वेश्या की तरह गाएगी, वीणा ले नगर में घूम फिर, हे भुला दी गई वेश्या, मधुर संगीत छेड़, बहुत से गीत गा ताकि तेरा स्मरण किया जाए
और 70 वर्षों के अंत के बाद ऐसा होगा कि प्रभु सूर की सुधि लेगा और वो अपनी कमाई की ओर फिर जाएगी और पृथ्वी के मुख पर संसार के सब राज्यों के साथ व्यभिचार करेगी। यशायाह 23:15-17।
एक ऐसे राज्य के शासनकाल में जो 70 भविष्यवाणी के वर्षों तक शासन करेगा, रोमन कैथोलिक चर्च भुला दिया जाएगा। उन 70 वर्षों के अंत में पोप की सत्ता मधुर राग छेड़ेगी, कई गीत गाएगी। भविष्यवाणी की दृष्टि से गीत अनुभव का प्रतीक है।
सिंहासन के सामने स्फटिक समान समुद्र पर वह कांच का समुद्र जो मानो आग से मिला हुआ है, इतना कि वो परमेश्वर की महिमा से अत्यंत दीप्तिमान है। वहाँ वे लोग इकट्ठे हैं जिन्होंने पशु पर और उसकी मूरत पर और उसकी छाप पर और उसके नाम की संख्या पर विजय पाली है। वे मेमने के साथ सियोन पर्वत पर परमेश्वर की वीणाएं लिए हुए खड़े हैं। वे 144,000 जो मनुष्यों में से छुड़ाए गए थे और वहाँ बहुत से जल की ध्वनि के समान और बड़े गर्जन की ध्वनि के समान वीणा वादकों के अपनी वीणाएं बजाने का स्वर सुनाई देता है और वे सिंहासन के सामने एक नया गीत गाते हैं, ऐसा गीत जिसे 144,000 को छोड़ कोई मनुष्य सीख नहीं सकता। ये मूसा और मेमना का गीत है, उद्धार का गीत। उस गीत को 144,000 को छोड़ कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि वो उनके अनुभव का गीत है, ऐसा अनुभव जो किसी और समूह को कभी नहीं हुआ। ये वे हैं जो मेमने के पीछे पीछे चलते हैं, वो जहां कहीं भी जाता है। ये पृथ्वी से जीवितों में से उठा लिए गए होकर परमेश्वर और मेमने के लिए पहलौठे फल गिने जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 15:2-3, 14:1-5। ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकलकर आए हैं। वे ऐसी विपत्ति के समय से होकर गुजरे हैं जैसा कि राष्ट्र होने के बाद से कभी नहीं हुआ। उन्होंने याकूब के संकट के समय की वेदना सह ली है। उन्होंने परमेश्वर के न्याय के अंतिम उंडेले जाने के दौरान बिना किसी मध्यस्थ के खड़े रहे हैं, परंतु वे छुड़ाए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र धोकर उन्हें मेमने के लहू में श्वेत कर लिया है। उनके मुंह में कोई कपट नहीं पाया गया क्योंकि वे परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन और रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके बीच निवास करेगा। उन्होंने पृथ्वी को अकाल और महामारी से उजड़ते देखा है। सूर्य को बड़े ताप से मनुष्यों को झुलसा देने का अधिकार मिला है और उन्होंने स्वयं दुख, भूख और प्यास सहन की है, परंतु वे अब फिर न भूखेंगे, न फिर प्यासे होंगे, न सूर्य उन पर पड़ेगा, न कोई ताप, क्योंकि सिंहासन के मध्य में जो मेमना है वो उन्हें चराएगा और उन्हें जीवन के जल के सोतों तक ले चलेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। प्रकाशित वाक्य 7:14-17। महान संघर्ष 6:4।
उसके मंदिर में हरेक उसकी महिमा का बखान करता है। भजन संहिता 29:9। और वो गीत जो छुड़ाए हुए लोग गाएंगे अपने अनुभव का गीत, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युगों के राजा, तेरे मार्ग धर्मी और सत्य है। हे प्रभु, कौन तेरा भय न मानेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। प्रकाशित वाक्य 15:3-4 RV शिक्षा 308।
70 भविष्य सूचक वर्षों के अंत में पापसी मधुर राग छेड़ेगी, अनेक गीत गाएगी ताकि उसका स्मरण किया जाए। 70 भविष्य सूचक वर्षों तक शासन करने वाले राज्य के अंत में रोमन कैथोलिक कलीसिया दुनिया को अपने पूर्व इतिहास के अनुभव की याद दिलाएगी। उस इतिहास में वो यूरोप के राजाओं के साथ अपने संबंध में नैतिक प्राधिकार के रूप में शासन करती थी। उस इतिहास को उचित रूप से अंधकार युग कहा जाता है, और जो भी अंधकार किसी भी प्रकार से उस इतिहास से जुड़ा हो जिसमें पापसी ने यूरोप के राजाओं पर शासन किया, उसे उसी मूलभूत कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसने आगे आने वाले समस्त अंधकार को जन्म दिया। वो कृत्य था कलीसिया और राज्य का गठजोड़, अर्थात यूरोप के राजाओं और कैथोलिक कलीसिया का संयोजन। बाइबिलीय विवाह में पुरुष को स्त्री पर प्रभुत्व रखना है, परंतु उस इतिहास में जो व्यभिचार हुआ वो पुरुष और स्त्री के संबंध की सच्ची व्यवस्था से उल्टा था।
70 वर्षों के अंत में एक बड़ा संकट उत्पन्न होगा जब बाइबल की भविष्यवाणी में वर्णित वो राज्य जो उस अवधि में दुनिया पर शासन करता है, जब पापत्व को भविष्य सूचक रूप से भुला दिया जाता है, अपने अंत पर पहुँच जाएगा।
उस राज्य के पतन से उत्पन्न विश्वव्यापी संकट कैथोलिक चर्च के लिए अवसर प्रदान करता है कि वो दुनिया को बताना शुरू करे कि उस राज्य के पतन से पैदा हुए उथल पुथल भरे समय से निपटने के लिए दुनिया को रोमन कैथोलिक चर्च के नैतिक अधिकार के अधीन होना होगा, जैसा कि अंधकार युग के इतिहास में दर्शाया गया है।
जब राज्य समाप्त हो जाता है और पापसी अपने अतीत के अनुभव का गीत गाती है, एक ऐसा अनुभव जिसे इतिहासकार अंधकार का नाम देते हैं, तो वो अंधकारमय इतिहास पापसी के लिए पृथ्वी के राजाओं के साथ बांटने योग्य ऐसा संदेश कैसे हो सकता है जो उन्हें उसके साथ व्यभिचार करने के लिए राजी कर दे। एक महान संकट में बीते युगों का अनुभव, उसका गीत, भविष्यवाणी की दृष्टि से भुला दिए जाने से पहले का उसका अनुभव पृथ्वी के राजाओं को ये तर्क क्यों देगा कि वे अंधकार के उस अनुभव को अपने महान संकट के समाधान के रूप में स्वीकार करें।
एक बड़ा वर्ग, यहाँ तक कि वे भी जो रोमन कैथोलिक मत को अनुकूल दृष्टि से नहीं देखते, उसकी शक्ति और प्रभाव से बहुत कम खतरा महसूस करते हैं। कई लोग ये दलील देते हैं कि मध्य युग में व्याप्त बौद्धिक और नैतिक अंधकार ने उसके मतवादों, अंधविश्वासों और उत्पीड़न के प्रसार को बढ़ावा दिया, और ये कि आधुनिक समय की बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता, ज्ञान का व्यापक प्रसार तथा धर्म के विषयों में बढ़ती उदारता, असहिष्णुता और अत्याचार के पुनरुत्थान को रोकती है। इस प्रबुद्ध युग में ऐसी स्थिति के अस्तित्व की मात्र कल्पना का भी उपहास किया जाता है। ये सत्य है कि बौद्धिक, नैतिक और धार्मिक महान प्रकाश इस पीढ़ी पर चमक रहा है। परमेश्वर के पवित्र वचन के खुले पृष्ठों के माध्यम से स्वर्ग का प्रकाश संसार पर बिखराया गया है, परंतु ये याद रखना चाहिए कि जितना अधिक प्रकाश दिया जाता है, उतना ही घना अंधकार उन लोगों का होता है जो उसे विकृत करते और अस्वीकार करते हैं।
बाइबल का प्रार्थना पूर्वक अध्ययन प्रोटेस्टेंटों को पापसी का वास्तविक चरित्र दिखा देता और उन्हें उससे घृणा करने तथा उससे दूर रहने के लिए प्रेरित करता। पर बहुत से लोग अपनी ही दृष्टि में इतने बुद्धिमान हैं कि उन्हें ये आवश्यकता नहीं लगती कि वे नम्रता से परमेश्वर को खोजें ताकि उनका सत्य की ओर मार्गदर्शन हो सके। अपनी प्रबुद्धता पर गर्व करने पर भी वे न तो पवित्र शास्त्रों को जानते हैं और न परमेश्वर की सामर्थ्य को। अपने विवेक को शांत करने के लिए उन्हें किसी न किसी उपाय की दरकार होती है, और वे वही खोजते हैं जो सबसे कम आध्यात्मिक हो और जिसमें नम्रता की सबसे कम मांग हो। वे ऐसी विधि चाहते हैं जो वास्तव में परमेश्वर को भुला दे, पर जिसे परमेश्वर को स्मरण करने की विधि समझ लिया जाए। पापसी इन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ये मानव जाति के दो वर्गों के लिए तैयार की गई है जो लगभग सारे संसार को समेट लेते हैं, वे जो अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं और वे जो अपने पापों में बने रहते हुए ही उद्धार पाना चाहते हैं। यही उसकी शक्ति का रहस्य है।
गहन बौद्धिक अंधकार का एक काल पापसी की सफलता के लिए अनुकूल सिद्ध हुआ है। ये भी सिद्ध होगा कि उज्ज्वल बौद्धिक प्रकाश का एक काल भी उसकी सफलता के लिए समान रूप से अनुकूल है। बीते युगों में जब मनुष्य परमेश्वर के वचन और सत्य के ज्ञान से रहित थे, उनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हजारों फंस गए अपने पैरों के लिए बिछाया गया जाल देखे बिना, इस पीढ़ी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें मानवीय अटकलों, गलत तौर पर विज्ञान कहलाने वाली की चकाजौंध से चौंधिया जाती हैं। वे जाल को पहचानते नहीं और जैसे आंखों पर पट्टी बंधी हो वैसे ही सहजता से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य की बौद्धिक शक्तियों को उसके सृष्टिकर्ता का वरदान समझा जाए और उन्हें सत्य और धर्म की सेवा में लगाया जाए, परंतु जब घमंड और महत्वाकांक्षा को पाला जाता है और लोग अपने सिद्धांतों को परमेश्वर के वचन से ऊपर उठाते हैं, तब बुद्धिमत्ता अज्ञानता से अधिक हानि कर सकती है। इसी प्रकार वर्तमान समय का वो मिथ्या विज्ञान जो बाइबल में विश्वास को कमजोर करता है, पापसी के स्वीकार के लिए उसके आकर्षक रूपों सहित मार्ग तैयार करने में उतना ही सफल सिद्ध होगा जितना अंधकार युग में ज्ञान को रोके रखना उसके विस्तार के लिए मार्ग खोलने में सिद्ध हुआ था। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 572।
रोमन कैथोलिक ये स्वीकार करते हैं कि सप्त में परिवर्तन उनकी कलीसिया द्वारा किया गया था और वे इसी परिवर्तन को कलीसिया के सर्वोच्च अधिकार का प्रमाण बताते हैं। वे घोषित करते हैं कि सप्ताह के पहले दिन को सप्त मानकर मनाने के द्वारा प्रोटेस्टेंट ये स्वीकार कर रहे हैं कि उसे दैवीय विषयों में विधान करने की शक्ति है। रोमन कलीसिया ने अपनी अब्रम्यता के दावे का परित्याग नहीं किया है
और जब संसार तथा प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं उसके द्वारा गढ़े गए एक नकली सप्त को स्वीकार करती हैं, जबकि वे यहोवा के सप्त को अस्वीकार करते हैं, तो वे व्यवहारतः इस दावे को स्वीकार कर लेते हैं। वे इस परिवर्तन के लिए प्राधिकार का हवाला दे सकते हैं, परंतु उनके तर्क की भ्रांति आसानी से समझी जा सकती है। पोपवादी इतना चतुर है कि वो देख लेता है कि प्रोटेस्टेंट स्वयं को धोखा दे रहे हैं और इस मामले के तथ्यों पर स्वेच्छा से आंखें मूंद रहे हैं। जैसे जैसे रविवार की प्रथा को बढ़ती हुई स्वीकृति मिलती है, वो हर्षित होता है, ये आश्वस्त होकर कि अंततः ये पूरे प्रोटेस्टेंट जगत को रोम के ध्वज के नीचे ले आएगी। सप्त में किया गया परिवर्तन रोमन कलीशिया के अधिकार का चिन्ह या निशान है। जो लोग चौथी आज्ञा की मांगों को समझकर सच्चे के स्थान पर झूठे सप्त का पालन करना चुनते हैं, वे इस प्रकार उसी सत्ता को सम्मान अर्पित कर रहे हैं जिसके द्वारा ही ये आज्ञा दी गई है। पशु का चिन्ह पापाई सप्त है, जिसे परमेश्वर द्वारा नियुक्त दिन के स्थान पर संसार ने स्वीकार कर लिया है, परंतु भविष्यवाणी में निर्दिष्ट पशु का चिन्ह लेने का समय अभी नहीं आया है, परीक्षा का समय अभी नहीं आया है। हर कलीसिया में सच्चे मसीही हैं, रोमन कैथोलिक समुदाय भी इसका अपवाद नहीं है। जब तक लोगों को प्रकाश नहीं मिला और उन्होंने चौथी आज्ञा का दायित्व नहीं देखा, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता। परंतु जब झूठे सप्त को लागू करने का फरमान जारी होगा और जब तीसरे स्वर्गदूत की जोरदार पुकार मनुष्यों को पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना के विरुद्ध चेतावनी देगी, तब झूठ और सत्य के बीच की रेखा स्पष्ट रूप से खिंच जाएगी। तब जो लोग अभी भी उल्लंघन करते रहेंगे, वे अपने माथे पर या अपने हाथ पर पशु का चिन्ह प्राप्त करेंगे। तेजी से हम इस काल के निकट पहुँच रहे हैं जब प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं एक झूठे धर्म का समर्थन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष सत्ता से मिल जाएंगी, जिसका विरोध करने के कारण उनके पूर्वजों ने सबसे भीषण उत्पीड़न सहा था। तब चर्च और राज्य के संयुक्त अधिकार से पोप का सप्त लागू कराया जाएगा। एक राष्ट्रीय धर्म त्याग होगा, जिसका अंत केवल राष्ट्रीय विनाश में होगा। बाइबल ट्रेनिंग स्कूल, 2 फरवरी 1913।
अध्याय स्वयं पर पूरी तरह विचार करने से पहले जिन प्रतीकों की हम पहचान करना चाहते हैं, उनमें से 5 पर अब हम चर्चा कर चुके हैं। बाइबल की भविष्यवाणी में नगर एक राज्य का प्रतीक होता है, और यशायाह अध्याय 23 में 2 ऐसे राज्य हैं जो आपस में निकटता से जुड़े हैं, परंतु स्पष्ट रूप से भिन्न है। पहला मुकुटधारी नगर है और दूसरा व्यापारी नगर। अंतिम दिनों में अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता की तिहरी एकता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति पोप तंत्र है। वही वो राज्य है जिसके पास मुकुट है।
जैसे जैसे हम अंतिम संकट के निकट आते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रभु के साधनों के बीच सामंजस्य और एकता विद्यमान हो। संसार तूफान, युद्ध और मतभेद से भरा हुआ है, फिर भी एक ही प्रधान पापसी सत्ता के अधीन लोग परमेश्वर के साक्षियों का विरोध करके परमेश्वर का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। इस एकता को महान धर्मत्यागी सुदृढ़ करता है, जब वो सत्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को एक करने का प्रयत्न करेगा, तब वो उसके समर्थकों को बांटने और तितर बितर करने का भी काम करेगा। ईर्ष्या, दुष्ट शंका, निंदा, ये सब कलह और फूट उत्पन्न करने के लिए उसी के द्वारा भड़काए जाते हैं। टेस्टिमोनीज खंड 7:118।
मुकुट वाला राज्य टायर है, जिसका अर्थ है एक चट्टान। इस अध्याय में टायर उस पापसी का प्रतिनिधित्व करता है जो मसीह का नकली प्रतिरूप बनाने का काम करती है, क्योंकि पापसी मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी में एंटी शब्द का अर्थ के स्थान पर होता है। पापसी हर स्तर पर मसीह का नकली प्रतिरूप बनाने की कोशिश करती है, और टायर नाम का अर्थ चट्टान है, क्योंकि पापसी युगों की चट्टान का नकली प्रतिरूप है।
ये सलाह सोर के विरुद्ध किसने की है?
जो मुकुट देने वाला नगर है, जिसके व्यापारी राजकुमार हैं, जिसके सौदागर पृथ्वी के माननीय हैं, सेनाओं के प्रभु ने ये ठहराया है कि वो सब महिमा के अभिमान को कलंकित करे और पृथ्वी के सब माननीयों को तुच्छ ठहराए। हे तर्शीश की बेटी, अपनी भूमि में नदी समान होकर निकल जा, अब शक्ति शेष नहीं। उसने समुद्र के ऊपर अपना हाथ फैलाया, उसने राज्यों को हिला दिया। व्यापारी नगर के विरुद्ध प्रभु ने ये आज्ञा दी है कि उसके दृढ़गढ़ नष्ट कर दिए जाएं। यशाया 23:8-11।
हम ये दिखाना चाहते हैं कि अनेक साक्ष्यों के आधार पर राज्यों का हिलाया जाना परमेश्वर द्वारा इस्लाम के माध्यम से पूरा किया जाता है।
इस्लाम वो शक्ति है जो जातियों को क्रोधित करती है और जातियों को हिलाने के लिए प्रयुक्त होती है। इस बिंदु पर हम ये पहचान रहे हैं कि प्रभु ने पृथ्वी के सब सम्मानितों को तिरस्कार में ले आने का निश्चय किया है, जो व्यापारी और सौदागर हैं, जिनके दुर्ग नष्ट किए जाने हैं। व्यापारी नगर और ताज पहनाने वाला नगर स्वर्ग के असंतोष को भड़का चुके हैं और प्रभु ने उनके दुर्ग नष्ट करने का संकल्प किया है, और ये अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थव्यवस्था का पतन संयुक्त राज्य अमेरिका में संडे कानून से पहले होता है, क्योंकि संडे कानून से पहले संयुक्त राज्य के नागरिकों की मांग है कि उन्हें दैवी अनुग्रह और सांसारिक समृद्धि में वापस लाया जाए। उनका तर्क है कि जब तक संडे को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता, तब तक परमेश्वर के न्याय समाप्त नहीं होंगे। कई बाइबल साक्षी इस बात से सहमत हैं कि हम विश्व अर्थव्यवस्था में एक भयंकर पतन के कगार पर हैं। वो पतन संडे कानून से पहले होता है, जैसे 1837 का पतन 22 अक्टूबर 1844 से पहले हुआ था।
और तब महान धोखेबाज मनुष्यों को ये मना लेगा कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वही इन बुराइयों का कारण है। वो वर्ग जिसने स्वर्ग के रोष को उकसाया है अपने सब कष्टों का दोष उन पर मढ़ देगा जिनकी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता उल्लंघनकर्ताओं के लिए निरंतर एक फटकार है। ये घोषित किया जाएगा कि लोग रविवार के विश्राम दिन का उल्लंघन करके परमेश्वर को रुष्ट कर रहे हैं, कि इस पाप ने ऐसी विपत्तियां लाई हैं जो तब तक नहीं थमेंगी जब तक रविवार का पालन कठोरता से लागू न कर दिया जाए, और कि जो चौथी आज्ञा के दावे प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार रविवार के प्रति श्रद्धा को नष्ट करते हुए वे लोगों के उपद्रवी हैं जो उनके ईश्वरीय अनुग्रह और सांसारिक समृद्धि में पुनर्स्थापन को रोक रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दास के विरुद्ध प्राचीन काल में लगाया गया आरोप समान रूप से भली भांति स्थापित आधारों पर फिर दोहराया जाएगा। और हुआ कि जब अहाब ने एलिया को देखा, तब अहाब ने उससे कहा, क्या तू ही है जो इसराइल को क्लेश में डालता है? उसने उत्तर दिया, मैंने इसराइल को क्लेश में नहीं डाला, परंतु तू और तेरे पिता का घराना, क्योंकि तुमने प्रभु की आज्ञाओं को त्याग दिया है और तू बालों के पीछे चला है। 1 राजा 18:17-18। जब लोगों का क्रोध झूठे आरोपों से भड़काया जाएगा, तब वे परमेश्वर के दूतों के प्रति बहुत हद तक वही मार्ग अपनाएंगे जो धर्मत्यागी इसराइल ने एलिया के प्रति अपनाया था। महान संघर्ष 590।
कर्मेल पर्वत पर एलिया का बाल के नबियों और उपवन के याजकों से सामना रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है। कलीसिया के लिए संदेश था, आज ही चुनो कि तुम किसकी सेवा करोगे। जब ये इतिहास रविवार के कानून के समय दोहराया जाएगा तो प्रश्न होगा, तुम कौन सा दिन चुनने जा रहे हो? क्योंकि जिस दिन को तुम चुनते हो वो बताता है कि तुम किसकी सेवा करते हो। कर्मेल पर्वत से पहले 3.5 वर्षों का कठोर अकाल था। रविवार के कानून से पहले रविवार कानूनों की एक श्रृंखला होती है, पर उन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। रविवार के कानून से जुड़ा सिद्धांत ये है कि राष्ट्रीय धर्मत्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है। इसका उदाहरण ये है कि 300 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने रविवार का कानून पारित किया, और थोड़े ही समय बाद प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 की पहली 4 तुरहियों ने 466 ईस्वी तक पश्चिमी रोम को उसके निष्कर्ष की ओर ले जाना शुरू कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन की कथा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें रविवार का क्रमिक महिमाकरण और साथ ही 7वें दिन के सप्त पर क्रमिक बढ़ती हुई पाबंदियां शामिल थीं। ये क्रमिक इतिहास तब अपने निष्कर्ष पर पहुंचा जब नागरिकों को रविवार मानने के लिए बाध्य किया गया या सप्त मानने के कारण सताया गया। यही निष्कर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती हुई रविवार संबंधी विधायिका का भी है। रविवार उपासना के प्रवर्तन से जुड़ा एक सिद्धांत ये है, राष्ट्रीय धर्म त्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि प्रकाशित वाक्य 13:11 के वास्तविक रविवार कानून से पहले रविवार कानूनों के प्रवर्तन में बढ़ोतरी परमेश्वर के न्यायों में भी बढ़ोतरी उत्पन्न करती है। हर एक अधिनियमन अपने अनुरूप एक विनाश लाएगा। जिन न्यायों के लिए नागरिक सप्त पालकों पर दोष लगा रहे हैं वे वास्तव में रविवार संबंधी विधानों के बढ़ते हुए प्रवर्तन से उत्पन्न हो रहे हैं। हमने महान संघर्ष से एक अंश शामिल किया है जिसका शीर्षक मैंने रविवार की प्रगति रखा है। मैं अनुशंसा करता हूं कि आप उसे एक बार फिर पढ़ें।
वो भविष्यद्वाणी की आत्मा नामक श्रेणी में है।
परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, ताकि उसके लोग विरोध और क्रोध के तूफान का सामना करने के लिए तैयार हों। जिनको आगे आने वाली घटनाओं की चेतावनी दी गई है, उन्हें आने वाले तूफान की शांत प्रतीक्षा में बैठ नहीं जाना चाहिए, ये सोचकर स्वयं को सांत्वना देते हुए कि संकट के दिन प्रभु अपने विश्वास योग्यों को आश्रय देगा। हमें अपने प्रभु की प्रतीक्षा करने वालों के समान होना है, न कि निष्क्रिय अपेक्षा में, बल्कि लगन से काम करते हुए अटल विश्वास के साथ। अब ये समय नहीं कि हमारा मन छोटी छोटी बातों में उलझा रहे। जब लोग सो रहे हैं, शैतान सक्रिय रूप से बातें इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा है कि प्रभु के लोगों को न दया मिले न न्याय। रविवार का आंदोलन अब अंधकार में अपनी राह बना रहा है। नेता लोग वास्तविक मुद्दे को छिपा रहे हैं और बहुत से जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वे स्वयं नहीं देखते कि गुप्त धारा किस दिशा में जा रही है। इसके दावे सौम्य है और ऊपरी तौर पर मसीही प्रतीत होते हैं, परंतु जब ये बोलेगा तो ये अजगर की आत्मा प्रकट कर देगा। हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ हमारी शक्ति में है वो सब करके आसन्न संकट को टालने का प्रयत्न करें। हमें लोगों के सामने अपने आप को उचित रूप में प्रस्तुत करके पूर्वाग्रह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उनके सामने वास्तविक मुद्दा रखना चाहिए, ताकि विवेक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले उपायों के विरुद्ध हम सबसे प्रभावी विरोध प्रस्तुत कर सकें। हमें पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और अपनी आस्था का कारण बताने में समर्थ होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता कहता है, दुष्ट दुष्टता करते रहेंगे और कोई दुष्ट समझ न पाएगा, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। टेस्टिमोनीज खंड 5:445।
रविवार के कानून के लिए चल रहे आंदोलन को पहचानना कठिन है, क्योंकि वो अंधकार में अपना रास्ता बना रहा है और पोप तंत्र चुपके चुपके और बिना किसी को शक हुए अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहा है। ये एक तथ्य है कि अंधकार में रविवार का कानून पारित कराने का कार्य 1,44,000 की परख की प्रक्रिया का केंद्रीय मुद्दा है। दानियल और सिस्टर व्हाइट के अनुसार, दुष्टों में से कोई भी नहीं समझेगा। दानियल के दुष्ट मत्ती की मूर्ख कुमारियां हैं, जिन्हें सिस्टर व्हाइट लौदीकियाई कहती हैं। बुद्धिमान लोग उन घटनाओं को समझेंगे जो अब घट रही हैं। चाहे हमारे आसपास का इतिहास परमेश्वर के वचन का खंडन करता हुआ ही क्यों न प्रतीत हो, क्या हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं या अपने आसपास जो हो रहा है उस पर? फिर भी हमें पहले से चेताया गया है कि अंत नूह के दिनों के समान होगा।
दुनिया उच्छृंखल मौज मस्ती से भरी, ईश्वर विहीन सुखों से भरी सो रही है। देह प्रधान निश्चिंतता में सोई हुई है। लोग प्रभु के आगमन को दूर धकेल रहे हैं। वे चेतावनियों पर हंसते हैं। अभिमानी डींग ये मारी जाती है। सब कुछ जैसा आरंभ से था वैसा ही चलता आ रहा है। कल आज ही के समान होगा और उससे भी अधिक भरपूर। 2 पत्रस 3:4, यशाया 56:9। हम भोग विलास में और गहरे उतरेंगे, पर मसीह कहते हैं, देखो मैं चोर के समान आता हूँ। प्रकाशित वाक्य 16:15। ठीक उसी समय जब संसार ठट्ठा करते हुए पूछता है उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है, चिन्ह पूरे हो रहे हैं। जब वे पुकारते हैं शांति और सुरक्षा, तब अचानक विनाश आता है। जब ठट्ठा करने वाला, सत्य का अस्वीकार करने वाला दुष्ट हो जाता है। जब धन कमाने के विभिन्न धंधों में कामकाज की दिनचर्या सिद्धांतों की परवाह किए बिना चलती रहती है। जब विद्यार्थी अपनी बाइबल को छोड़कर हर बात का ज्ञान उत्सुकता से खोज रहा होता है, मसीह चोर के समान आ जाता है।
दुनिया की हर चीज उथल पुथल में है। समय के संकेत अशुभ हैं। आने वाली घटनाएं अपनी छाया पहले ही डाल देती हैं। परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी से हटती जा रही है और समुद्र और स्थल दोनों पर एक के बाद एक विपत्तियां आती जा रही हैं। आंधी तूफान, भूकंप, आग, बाढ़ें, हर प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। भविष्य कौन पढ़ सकता है, सुरक्षा कहाँ है? मानवीय या सांसारिक किसी भी चीज में कोई भरोसा नहीं है। लोग तेजी से उस ध्वज के नीचे पंक्तिबद्ध हो रहे हैं जिसे उन्होंने चुना है। बेचैनी से वे अपने नेताओं की गतिविधियों को देखते और प्रतीक्षा करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे प्रभु के प्रकट होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं और काम कर रहे हैं। एक और वर्ग
प्रथम महान धर्मत्यागी के सेनापतित्व के अधीन पंक्ति में सम्मिलित हो रहा है। बहुत कम लोग मन प्राण से ये मानते हैं कि हमें नरक से बचना है और स्वर्ग को पाना है।
संकट चुपचाप धीरे धीरे हम पर आ रहा है। सूर्य आकाश में चमक रहा है अपनी सामान्य परिक्रमा करता हुआ, और आकाश अब भी परमेश्वर की महिमा की घोषणा करता है। लोग अब भी खाते पीते हैं, बोते और निर्माण करते हैं, विवाह करते हैं और विवाह कराते हैं। व्यापारी अब भी खरीद बिक्री कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं, सर्वोच्च स्थान के लिए होड़ कर रहे हैं। भोग विलास के प्रेमी अब भी नाट्य गृहों, घुड़दौड़ों और जुए के अड्डों की ओर उमड़ रहे हैं। सब ओर अत्यधिक उत्तेजना छाई हुई है। फिर भी अनुग्रह काल की घड़ी तेजी से समाप्त हो रही है और हर मामले का अनंत निर्णय होने को है। शैतान देखता है कि उसका समय कम रह गया है। उसने अपने सारे साधन और शक्तियां लगा दी हैं ताकि मनुष्य धोखा खाए, भ्रमित रहे, व्यस्त और मोहित बने रहें, जब तक कि अनुग्रह काल का दिन समाप्त न हो जाए और दया का द्वार सदा के लिए बंद न हो जाए।
गंभीरता से सदियों के पार जैतून पर्वत से हमारे प्रभु के चेतावनी भरे वचन हम तक पहुँचते हैं। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि किसी भी समय तुम्हारे मन पेटूपन, मतवालेपन और सांसारिक चिंताओं से बोझिल हो जाए और वो दिन तुम पर अचानक आ पड़े। इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करो कि जो सब बातें होने वाली हैं उनसे बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। डिजायर ऑफ एजेस 635-636।
यशायाह के 23वें अध्याय में सीदोन संयुक्त राज्य अमेरिका है और टायर पोप तंत्र है। टायर और सीदोन प्राचीन काल के समकालीन फिनिकी नगर थे जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित थे। वे अपने समुद्री व्यापार, समृद्धि और प्राचीन विश्व में अपने प्रभाव के लिए जाने जाते थे। उस खंड में सीदोन और उसके व्यापारियों ने तर्शीश की पूर्ति की। सीदोन के व्यापारियों ने सीहोर का बीज का सौदा किया, जो एक नदी की फसल है और नदी का फल है, और वो उसकी आय है क्योंकि वो राष्ट्रों की मंडी है। सभी भविष्यद्वक्ता संसार के अंत के विषय में बोलते हैं, तो संसार के अंत में राष्ट्रों की मंडी कौन है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका है।
सीहोर मिस्र की एक नदी है, संभवतः नील डेल्टा, और इसका उपयोग संसार की धन संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है क्योंकि मिस्र ही संसार है। जिदोन की कुवारी बेटी यूएसए की अंतिम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है और वो संडे लॉ के साथ आने वाले मार्शल लॉ तथा उसके तुरंत बाद होने वाले राष्ट्रीय विनाश से उत्पीड़ित होती है। जिदोन की वे कुमारियां टायर के विषय में किए गए इस प्रश्न से ताड़ना पाती हैं, क्या ये तुम्हारा हर्षित नगर राज्य है जिसमें यूएसए ने आनंद मनाया था? क्या यह वही राज्य है जिसकी प्राचीनता प्राचीन दिनों की है, जबकि उस अंश के अनुसार इसकी स्थापना बाढ़ के तुरंत बाद निम्रोद ने की थी?
परमेश्वर ने टायर मुकुटधारी नगर को दंड देने का निश्चय किया है और इसे अपना उद्देश्य ठहराया है। पापाई सत्ता के दंड में विश्व की वित्तीय संरचना का पतन शामिल है, क्योंकि प्रभु ने दिया है कि विरुद्ध एक आज्ञा सीदोन व्यापारी नगर संयुक्त राज्य, उसकी आज्ञा मजबूत गढ़ों को नष्ट करना, अर्थात संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था सप्त की आज्ञा है, क्योंकि राष्ट्रीय धर्म त्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है।
पापाई सत्ता का दंड तब शुरू होता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया का आर्थिक पतन होता है। जिदोन की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक घर है जो एक ऐसे वित्तीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है जो नष्ट हो जाता है क्योंकि अब उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। उस घर से अब न निवेश होगा न लाभ, क्योंकि वो नष्ट हो चुका है। ये विनाश रविवार के कानून के समय घटित होता है, यद्यपि रविवार के कानून से पहले ही दंड लगातार बढ़ रहे होते हैं। जब ये पतन आएगा तो पापाई सत्ता अपने व्यापारी राजकुमारों और सम्मानित सौदागरों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका और तर्शीश के जहाज विलाप करेंगे।
इस खंड में तर्शीश के स्थान का संबंध प्राचीन काल की समृद्धि से है और बाइबल में तर्शीश के जहाज आर्थिक शक्ति के प्रमुख प्रतीक है,
क्योंकि राजा के जहाज हुराम के सेवकों के साथ तर्शीश जाते थे। तीन तीन वर्ष में एक बार तर्शीश के जहाज आते थे जो सोना, चांदी, हाथी दांत, वानर और मोर लाते थे, और राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर था। 2 इतिहास 9:21-22।
जहाज आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं
और बाइबल की भविष्यवाणी में तर्शीश प्रमुख आर्थिक जहाज है। तर्शीश की पुत्री के रूप में दर्शाई गई तर्शीश की अंतिम पीढ़ी से कहा गया है कि तू अपनी भूमि में नदी की तरह होकर निकल जा, और वो पाती है कि उसकी भूमि में अब और शक्ति नहीं रही, और अब वो सूर के राज्य पर आनंद भी नहीं मना सकती। जिस शक्ति की वे तलाश कर रहे थे वो सीदोन की पूर्व आर्थिक शक्ति थी, पर वो जा चुकी थी क्योंकि समुद्र ने ये कहकर बोल दिया था, मैं न तो कष्ट उठाती हूँ, न संतान उत्पन्न करती हूँ, न जवानों की परवरिश करती हूँ, न कुमारियों का पालन करती हूँ। और इस प्रकार समुद्र की अंतिम पीढ़ी की पहचान होती है, जो कि संसार के लोग हैं, जो संसार की अर्थव्यवस्था के विनाश पर विलाप कर रहे हैं। और तब संसार के लोग इस वास्तविकता के प्रति जाग उठते हैं कि वे पृथ्वी के इतिहास की अंतिम पीढ़ी हैं, और अनंत जीवन की तैयारी करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है।
जब अनंत दृश्यों की वास्तविकता मनुष्य की इंद्रियों के सामने प्रकट होगी, तब धन का मूल्य शीघ्र ही अत्यंत अचानक घट जाएगा। इवेंजेलिज्म 62।
इस खंड में सभी को पीड़ा देने वाले दो समाचार या संदेश हैं। पहला समाचार मिस्र से संबंधित है और दूसरा समाचार टायर है। मिस्र का समाचार भूतकाल में है, क्योंकि यशाया कहता है, जैसा कि मिस्र के विषय के समाचार पर, इस प्रकार ये दिखाता है कि जिदोन संयुक्त राज्य अमेरिका के उसके विनाश से पहले परमेश्वर ने मिस्र के साथ कुछ किया था। परमेश्वर ने मिस्र के साथ जो किया, जो मिस्र के समाचार का भी प्रतिनिधित्व करता है, वो ये कि जब परमेश्वर ने पहली बार चुने हुए लोगों के साथ वाचा बांधी, तो उसी संबंध में उसने मिस्र का विनाश कर दिया। ये दोनों समाचार एक ही समाचार है। मिस्र का समाचार आरंभ है और टायर का समाचार अंत है। अल्फा और ओमेगा ने उस विषय के आरंभिक इतिहास के द्वारा अंतिम दिनों में 144,000 के साथ की जाने वाली वाचा को दर्शाया है। मिस्र के विषय का समाचार लाल समुद्र की मुक्ति है, जब फिरौन और उसकी सेना नष्ट कर दी गई। ये परमेश्वर के लोगों की अंतिम मुक्ति का प्रतीक है, जैसा कि उस समाचार द्वारा प्रदर्शित है जो टायर का भार है। बाइबल में जिस शक्ति को तर्शीश के जहाज़ों का विनाश करने वाली के रूप में दर्शाया गया है, वो इस्लाम है। इस्लाम के विषय को आगे लिया जाएगा, इसलिए हम इस विषय पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। उसे इस अंश में चिटिम, जो साइप्रस के लिए एक प्राचीन शब्द है, के रूप में दर्शाया गया है, और ये अंश कहता है कि सीदोन और टायर का विनाश चिटिम से प्रकट किया गया है। इस्लाम के प्रतीक में बाइबल की भविष्यवाणी में संयुक्त राज्य अमेरिका के विनाश का एक बहुत ही विशिष्ट चित्रण शामिल है। यशायाह की पुस्तक में उल्लिखित दिनों और वर्षों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर उसके बाद आने वाले खंड के भविष्य सूचक काल को दर्शाते हैं। यशायाह का 23वां अध्याय 22वें अध्याय में वर्णित दर्शन की घाटी का भार के बाद आता है। उससे पहले 21वां अध्याय है, जिसमें तीन भार हैं, और वे तीनों इस्लाम की पहचान कराते हैं। उस अध्याय से पहले 20वें अध्याय की पहली आयत में भविष्यवाणीमय इतिहास की भूमिका दी गई है, जहां आगे के अध्यायों में बताई गई विनाश की भविष्यवाणियों की पहचान कराई गई है।
उस वर्ष जब तर्तान अशदोद में आया, जब अश्शूर का राजा सरगोन ने उसे भेजा, उसने अशदोद के विरुद्ध युद्ध किया और उस पर अधिकार कर लिया। यशाया 20:1।
तर्तान शब्द एक नाम हो सकता है, या अधिक संभावना है कि वो किसी सैन्य नेता की उपाधि है। तर्तान मिस्र के नगर अशदोद में आया और उस पर कब्जा कर लिया। उस ऐतिहासिक काल में जब असीरियाई धीरे धीरे संसार पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे, असीरिया बाबुल का प्रतिरूप था। असीरिया और बाबुल दोनों उत्तर से आने वाले राज्य थे, ऐसे राज्य जिन्हें सिंह कहा गया, जो परमेश्वर की भेड़ों को तितर बितर करते थे, और दोनों को वही दंड मिलता है। सबसे पहले असीरिया था, अंत में बाबुल।
इज़राइल तितर बितर हुई भेड़ है, सिंहों ने उसे खदेड़ दिया है। पहले अश्शूर के राजा ने उसे निगल लिया, और अंत में यही बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियां तोड़ दीं। इस कारण सेनाओं के यहोवा इज़राइल के परमेश्वर यों कहता है, देखो मैं बाबुल के राजा और उसके देश को दंड दूंगा, जैसा मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था। यिर्मयाह 50:17-18।
भविष्यवाणी के अनुसार वे दोनों अहंकारी अश्शूरवासी हैं।
जब सनहेरी बोघमंडी अश्शूरी ने परमेश्वर को धिक्कारा और उसकी निंदा की और इज़राइल को विनाश की धमकी दी, तो उसी रात ऐसा हुआ कि यहोवा का दूत निकल पड़ा और अश्शूरियों की छावनी में 185,000 को मार डाला। सन्हेरीब की सेना में से बल के सब पराक्रमी पुरुष और प्रधानों और सरदारों काट डाले गए, सो वो लज्जित मुख लेकर अपने देश को लौट गया। सन्हेरीब की सेना में से बल के सब पराक्रमी पुरुष और प्रधानों और सरदारों को काट डाले गए, सो वो लज्जित मुख लेकर अपने देश को लौट गया। महान विवाद 522।
जिस वर्ष तर्तान अश्दोद आया और उस पर अधिकार कर लिया, वो पापसी शक्ति द्वारा संसार की क्रमिक विजय का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि दानियेल 11 के अंतिम 6 पदों में चित्रित है। रविवार के कानून के संकट का इतिहास, जो अन्वेषणात्मक न्याय के अंतिम दिन हैं और जो सीधे कार्यान्वयन न्याय 7 अंतिम विपत्तियां में ले जाता है, वही वो ऐतिहासिक परिवेश है जिसका प्रतिनिधित्व उस वर्ष से होता है जब तर्तान अश्दोद आया। उस इतिहास का संदर्भ स्थापित होने पर यशाया तब इस्लाम के विषय में 3 विनाश सूचक भविष्यवाणियां देता है, 1 लाओदीकियाई एडवेंटवाद के विषय में और फिर सोर का बोझ। अध्याय 24 7 अंतिम विपत्तियों के शास्त्रीय उदाहरणों में से एक है। इसके बाद अध्याय 25 आता है, जो परमेश्वर की प्रजा की अंतिम मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हम महान क्लेश के समय के दौरान परमेश्वर की प्रजा को सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक व्यक्त करते हुए पाते हैं।
और उस दिन ये कहा जाएगा, देखो यही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी प्रतीक्षा करते रहे हैं और वो हमें बचाएगा, यही प्रभु है, हम उसकी प्रतीक्षा करते रहे हैं, हम आनंदित होंगे और उसके उद्धार में मगन होंगे। यशाया 25:9।
144,000 वे बुद्धिमान कुवारियां हैं जो अपने प्रभु के विवाह में आने की प्रतीक्षा करती रहीं, यद्यपि वो देर करते रहे, जैसा कि 10 कुमारियों के दृष्टांत में वर्णित है। वे लाओदीकिया वाले नहीं हैं, वे फिलादेल्फिया वाले हैं। इस बिंदु तक ये लेख संदर्भ स्थापित कर रहा था।
1798 में नेपोलियन ने पोप को बंदी बना लिया, जिससे प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार संसार के अंत में भर जाने वाला वो भविष्य सूचित घातक घाव लगा। उसी समय दानियेल 2:7-8 और 11 तथा प्रकाशित वाक्य 12:13-16-17 और 18 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका बाइबल की भविष्यवाणी के 6 राज्य के रूप में अपना स्थान ले लेता है। तब से संयुक्त राज्य अमेरिका का गणतांत्रिक सींग और प्रोटेस्टेंट सींग एडवेंटवाद दोनों ये भूल गए हैं कि पापाई सत्ता कौन है। 1798 वो पहला वर्ष था जब शेष विश्व के राष्ट्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, और यही वो वर्ष भी है जब इतिहास में पहले स्वर्गदूत का संदेश आया।
उस समय किसी प्रोटेस्टेंट का आदर्श वाक्य था, बाइबल और केवल बाइबल।
प्रोटेस्टेंट स्वयं को केवल बाइबल के रक्षक मानते हैं, और जब दूसरे स्वर्गदूत के आगमन पर एडवेंटवाद ने उनका दायित्व संभाला, तो उन्होंने उस आदर्श वाक्य को स्वीकार किया और बाद में उन्हें पुस्तक के लोग कहा जाने लगा। विलियम मिलर की सेवकाई के माध्यम से उन्हें नियमों का एक समूह दिया गया था, जो यदि ठीक से अपनाए जाएं तो जो भी सुनना चाहे उन सब के लिए बाइबल का अर्थ खोल दें। भविष्यवाणी की व्याख्या के लिए मिलर के नियम वही हैं जिनका अध्ययन प्रेरणा के अनुसार हमें करना चाहिए यदि हमें तीसरे स्वर्गदूत का संदेश देना है।
मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। सत्य का प्रकाश जलते हुए दीपक की भांति फैल रहा है, और जो लोग प्रकाश से प्रेम करते हैं वे अंधकार में नहीं चलेंगे। वे पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करेंगे ताकि उन्हें निश्चय हो जाए कि वे सच्चे चरवाहे की आवाज़ सुन रहे हैं, न कि किसी पराए की। जो लोग तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रचार करने में संलग्न हैं, वे उसी विधि के अनुसार पवित्र शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं जिसे फादर मिलर ने अपनाया था। व्यूज ऑफ द प्रोफेसीज एंड प्रोफेटिक क्रोनोलॉजी नामक छोटी पुस्तक में फादर मिलर बाइबल के अध्ययन और व्याख्या के लिए निम्नलिखित सरल परंतु बुद्धिमत्तापूर्ण और महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत करते हैं।
1. बाइबल में प्रस्तुत विषय के साथ हर शब्द का उचित संबंध होना चाहिए। 2. समस्त शास्त्र आवश्यक है और उसे लगन व अध्ययन से समझा जा सकता है। 3. जो विश्वास के साथ बिना डगमगाए मांगते हैं उनसे शास्त्र में प्रकट की गई कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती और न रहेगी। 4.
सिद्धांत को समझने के लिए जिस विषय को आप जानना चाहते हैं उस पर संबंधित सभी शास्त्र वचनों को एकत्र करें, फिर हर शब्द को उसका उचित प्रभाव दें, और यदि आप बिना किसी विरोधाभास के अपनी धारणा बना सकते हैं तो आप गलत नहीं हो सकते। 5. शास्त्र स्वयं का व्याख्याता होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में मानदंड है। यदि मैं अपने लिए व्याख्या करने हेतु किसी शिक्षक पर निर्भर करूं और वो उसके अर्थ का अनुमान लगाए या अपने सांप्रदायिक मत के कारण उसे वैसा ही चाहे या बुद्धिमान समझा जाने के लिए ऐसा करे, तो उसका अनुमान, इच्छा, मत या बुद्धि ही मेरे लिए मानदंड बन जाएगी, न कि बाइबल।
उपर्युक्त इन नियमों का एक अंश है और बाइबल के हमारे अध्ययन में प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों पर ध्यान देना हम सभी के लिए उचित होगा।
सच्चा विश्वास पवित्र शास्त्र पर आधारित है, परंतु शैतान शास्त्रों को तोड़ मरोड़कर भ्रम और भटकाव फैलाने के लिए कितनी ही युक्तियां अपनाता है, इसलिए वे वास्तव में क्या सिखाते हैं ये जानने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। आज के समय की बड़ी भ्रांतियों में से एक ये है कि भावनाओं पर अत्यधिक जोर दिया जाए, और केवल इसलिए कि वो वचन भावनाओं से मेल नहीं खाता, परमेश्वर के वचन के स्पष्ट कथनों की अनदेखी करते हुए भी ईमानदारी का दावा किया जाए। बहुतों का विश्वास भावना के सिवा किसी आधार पर नहीं टिका है। उनका धर्म केवल जोश पर आधारित है। जब वो थम जाता है तो उनका विश्वास भी चला जाता है। भावना भूसी हो सकती है, पर परमेश्वर का वचन गेहूं है, और भविष्यद्वक्ता कहता है, भूसी का गेहूं से क्या संबंध है।
जिनके पास कभी प्रकाश और ज्ञान था ही नहीं और जिन्हें वे प्राप्त भी नहीं कर सकते थे, उन्हें उसकी उपेक्षा के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। परंतु बहुत से लोग उस सत्य का पालन करने से इनकार करते हैं जो मसीह के राजदूत उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे संसार के मानक के अनुसार ढलना चाहते हैं, और जो सत्य उनकी समझ तक पहुंच चुका है, जो प्रकाश आत्मा में चमका है, वही न्याय के दिन उन्हें दोषी ठहराएगा। इन अंतिम दिनों में हमारे पास वो संचित प्रकाश है जो युगों से चमकता आया है, और उसी के अनुरूप हमें उत्तरदायी ठहराया जाएगा। पवित्रता का मार्ग संसार के स्तर पर नहीं है, वो ऊंचा उठाया हुआ मार्ग है। यदि हम इस मार्ग पर चलें, यदि हम प्रभु की आज्ञाओं के मार्ग पर दौड़े, तो हम पाएंगे कि धर्मी का मार्ग उस तेजस्वी प्रकाश के समान है जो पूर्ण दिन तक अधिक से अधिक चमकता जाता है। रिव्यू एंड हेरल्ड, November 25, 1884।
आप प्रोफेटिक कीज श्रेणी के अंतर्गत विलियम मिलर शीर्षक वाले लेख में विलियम मिलर के नियमों के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं।
फादर मिलर के भविष्यवाणी की व्याख्या के नियमों के भीतर बाइबल के हमारे अध्ययन में हम सभी के लिए प्रस्तुत सिद्धांतों पर ध्यान देना उचित होगा। प्रोटेस्टेंटवाद के सींग को वो पवित्र दस्तावेज दिया गया जिसे हम बाइबल कहते हैं, और उसमें निहित सिद्धांतों की रक्षा और प्रसार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, और उस प्रोटेस्टेंट सींग को उन पवित्र दस्तावेजों के अर्थ और अभिप्राय का ठीक रीति से विवेचन करने के लिए नियमों का एक सेट भी दिया गया।
गणतंत्रवाद के सींग को एक पवित्र दस्तावेज दिया गया जिसे हम संविधान कहते हैं, और उसमें निहित सिद्धांतों की रक्षा तथा उन्हें बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। गणतंत्रवाद के उस सींग को पवित्र दस्तावेज के अर्थ और उद्देश्य की सही व्याख्या करने हेतु नियमों का एक समूह भी दिया गया। संविधान की सही व्याख्या के लिए दिए गए ये नियम अधिकार पत्र है, और ये अधिकार पत्र अपने प्रथम प्रावधानों में संविधान के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्रतिष्ठित करता है। अधिकार पत्र में सूचीबद्ध प्रथम संशोधन धर्म, अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
कांग्रेस धर्म की स्थापना से संबंधित कोई कानून नहीं बनाएगी, और न ही धर्म के स्वतंत्र अभ्यास पर रोक लगाएगी, और न ही भाषण की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करेगी, और न ही लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार तथा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार से याचिका करने के अधिकार में कटौती करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम संशोधन।
रविवार का कानून संविधान के पहले मुद्दे के खिलाफ एक खुला हमला है जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसे रविवार का कानून समाप्त कर देता है, और इस प्रकार संविधान के अंत को बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत को और उन पर होने वाले सताव की शुरुआत को चिन्हित करता है जो उस समय तीसरे स्वर्गदूत का संदेश जोरदार पुकार में घोषित कर रहे होंगे। जो लोग तीसरे स्वर्गदूत की जोरदार पुकार का प्रचार कर रहे हैं और प्रथम संशोधन तथा संविधान के विनाश के विरुद्ध विरोध कर रहे हैं,
उन्हें वही लोग सताते हैं जिन्हें पवित्र नियमों को बनाए रखना और लागू करना था, जो उस पवित्र दस्तावेज की रक्षा करते हैं जिसकी रक्षा करने के लिए वे नियुक्त किए गए थे। ये मेमने के समान पृथ्वी पशु के दो सींगों के समानांतर इतिहासों को समझने और लागू करने का एक उदाहरण है। संविधान के संस्थापक पिता पिता मिलर के समानांतर है। मिलर के लिए प्रयुक्त पिता शब्द किसी पोपवादी पुजारी के लिए नहीं, बल्कि एक नेता को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया गया है। बाइबल उन मनुष्यों को पिता कहने से मना करती है जो आत्मिक मार्गदर्शक होने का दावा करते हैं। मिलराइट्स का नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया है, जैसा कि अक्सर होता है। इस भेद को न समझ पाना उस अर्थ का कुछ भाग खो देना है जो एलिया संदेश का है, जब वो पिताओं के हृदय बच्चों की ओर और बच्चों के हृदय पिताओं की ओर फेर देता है, और इसके विपरीत।
यशाया अध्याय 23 में संयुक्त राज्य अमेरिका बाइबल की भविष्यवाणी का छठा राज्य है, और ऐसा ही बना रहता है जब तक कि वो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय अपने संविधान को उलट नहीं देता। छठा राज्य 70 भविष्य सूचक वर्षों तक शासन करता है, जो कि एक राजा के दिन है। वो राज्य राजा ही राज्य है जिसने 70 वर्षों तक शासन किया, बाबुल था। उन 70 वर्षों के दौरान राज्य का सींग बाबुल की सरकार थी और कलीसिया का सींग कसदी थे। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो 144,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों सींग और परमेश्वर की प्रजा दानियल की गवाही में दर्शाए गए हैं। बाबुल में बंधुआई के 70 वर्ष वही एक राजा के दिन थे जिन्हें यशाया इस बात की पहचान करने के लिए प्रयुक्त करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भविष्य सूचक इतिहास और एडवेंटवाद का इतिहास 1798 से लेकर रविवार के कानून तक है। संयुक्त राज्य के दोनों सींगों की भविष्य सूचक इतिहास रेखा हमें शुरुआत और अंत पर विचार करने देती है, जहां दोनों सींग गवाह की तरह दूसरे सींग की विशेषता की पहचान कराते हैं। आखिरकार सभी सींग समान थे। दानियल की पुस्तक में सींगों का वर्णन है, कुछ टूटे हुए थे और टूटे हुए सींग से अन्य सींग उगे। दानियल में कुछ सींग एक दूसरे के समान आकार के नहीं थे और कुछ अन्य से बाद में प्रकट हुए, परंतु संयुक्त राज्य के दो सींगों के साथ ऐसा नहीं है। वे दोनों सींग एक ही इतिहास के माध्यम से समानांतर चलते हैं और वही मार्गचिन्ह उत्पन्न करते हैं, यद्यपि उद्देश्य की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। उस इतिहास के भीतर कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। एडवेंटिज्म की शुरुआत में फिलाडेल्फिया की कलीसिया द्वारा दर्शाए गए भविष्यवाणी संबंधी इतिहास से लाओदिकिया की कलीसिया की ओर एक परिवर्तन हुआ, अतः अंत में भी लाओदिकिया के भविष्यवाणी संबंधी इतिहास से एक परिवर्तन होना चाहिए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य इस समझ के प्रकाश को शामिल करता है, और ये उसी का हिस्सा है जो इस समय उद्घाटित किया जा रहा है।
और 70 वर्षों के अंत के बाद पोप गाएगा और भूली हुई वेश्या को याद किया जाएगा। उसे रविवार के कानून के समय याद किया जाता है, जहां मुद्दा सूर्य की उपासना और उस दिन की उपासना के बीच है, जिसे परमेश्वर की व्यवस्था ने मानव जाति को याद रखने के लिए बताया।
इस लेख में हमने पहचाना है कि बाबुल के 70 वर्षीय शासन का इतिहास 1798 से लेकर रविवार के कानून तक संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का प्रतीक है। एक पिछले लेख में और अक्सर हबक्कूक की सारणियों में हम ये पहचानते हैं कि मिस्र में बंधुआई और वहां से मुक्ति भी संयुक्त राज्य अमेरिका और परमेश्वर की प्रजा के इतिहास का प्रतीक है। बाबुल, मिस्र, एडवेंटवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका की वे चार इतिहास रेखाएं इन रेखाओं पर रखने योग्य अकेली रेखाएं नहीं हैं, परंतु जब हम उन चार रेखाओं पर पहले उल्लेख का नियम लागू करते हैं तो ये बिल्कुल अद्भुत है। मैं इस लेख को अपने आशय के एक सरल और आंशिक उदाहरण के साथ समाप्त करूंगा, और जब हम आगे किसी समय यशाया अध्याय 23 के इतिहास पर और चर्चा करेंगे तब मैं इसी दिशा में आगे बढ़ने का इरादा रखता हूँ।
बाबुल के इतिहास में शुरुआत में एक परिवर्तित राजा है और अंत में एक दुष्ट राजा। ये मायने नहीं रखता कि वो बाइडेन हो या ट्रंप, क्योंकि दानियल की पुस्तक सिखाती है कि शासकों को स्थापित करना और उन्हें हटाना परमेश्वर का काम है। रविवार के कानून के समय चाहे नेता डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, ये निश्चित है कि वो दुष्ट नेता होगा। नबुकदनेस्सर ही बाबुल था,
वो बाबुल का अत्याचारी था जो तीन भले पुरुषों को आग में फेंकने को तैयार था, परंतु अंततः वो दानियल के परमेश्वर में विश्वास करने लगा। अंतिम शासक बेलशस्सर के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो एक दुष्ट राजा था। भविष्यवाणी में संयुक्त राज्य एक मेमने के रूप में शुरू होता है जो मसीह और मानव जाति के लिए उसके बलिदान का प्रतीक है। अंत में संयुक्त राज्य अजगर की तरह बोलेगा। इस इतिहास क्रम में मसीह से शैतान तक का परिवर्तन नबूकदनेस्सर और बेलशस्सर के बीच के अंतर से दर्शाया गया है।
बेलशस्सर को परमेश्वर की इच्छा को जानने और करने के अनेक अवसर दिए गए थे। उसने अपने दादा नबूकदनेस्सर को मनुष्यों के समाज से निकाले जाते देखा था। उसने ये भी देखा था कि जिस बुद्धि पर वो घमंडी सम्राट घमंड करता था, उसे देने वाले ने वही उससे छीन ली। उसने ये भी देखा कि राजा को उसके राज्य से खदेड़ दिया गया और उसे मैदान के पशुओं का साथी बना दिया गया। परंतु मनोरंजन और आत्मगौरव के प्रति बेलशस्सर के प्रेम ने वे शिक्षाएं मिटा दी जिन्हें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए था, और उसने वही पाप किए जिनके कारण नबूकदनेस्सर पर कठोर न्याय आए। उसने उसे अनुग्रह पूर्वक दिए गए अवसरों को व्यर्थ खो दिया। सत्य से परिचित होने के लिए अपने हाथों में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करना उसने उपेक्षित कर दिया। मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसे उस महान परंतु मूर्ख राजा ने उदासीनता से टाल दिया। बाइबल इको 25 अप्रैल 1898।
ध्यान दें कि दुष्ट बेलशस्सर एक मूर्ख राजा था। उसने अपने पिता नबूकदनेस्सर के समान ही न्याय का सामना किया, क्योंकि दोनों न्यायों को लय व्यवस्था 26:7 समय के रूप में दर्शाया गया था। नबूकदनेस्सर 2520 दिनों तक मैदानों में पशु की तरह रहता रहा, जो कि बाइबल के अनुसार 7 वर्ष होते हैं, और उसके पुत्र बेलशस्सर का जो न्याय दीवार पर लिखा गया था वो भी 2520 का ही प्रतिनिधित्व करता है। अंतर ये था कि नबूकदनेस्सर के विरुद्ध आया न्याय उसे बदलकर बुद्धिमान राजा बना दिया, जबकि बेलशस्सर का न्याय तो मूर्ख राजा पर ही था।
बाबुल के अंतिम शासक पर, जैसे प्रतिरूप में उसके प्रथम पर, दिव्य प्रहरी का ये निर्णय आ पहुंचा था। हे राजा, तुझसे ये कहा जाता है, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया है। दानियल 4:31। भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं 533।
अंतिम राष्ट्रपति के लिए दीवार पर लिखी बात प्रथम संशोधन है, जो चर्च और राज्य के पृथक्करण की दीवार को परिभाषित करता है, जिसे अंतिम मूर्ख राजा समझ नहीं पाता। लैवीय व्यवस्था 26:7 समय लोगों के बिखराव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे रविवार के कानून के समय उत्तर का राजा संपन्न करता है। वो बिखराव वही राष्ट्रीय विनाश है जो रविवार के कानून के पश्चात आता है। छठे राष्ट्र ने अपने संस्थापक पिताओं के वे पाठ भूल गए जिन्होंने संविधान की रचना इस उद्देश्य से की थी कि सुरक्षा केवल एक भ्रष्ट कलीसिया से ही नहीं, बल्कि उन निरंकुश यूरोपीय राजाओं से भी मिले जिनके साथ वो भ्रष्ट स्त्री सोई थी। संस्थापक पिता उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने पोप शाही और यूरोप के राजाओं को अस्वीकार किया, क्योंकि वे पोप शाही के अंधकार के कारण हुए 1260 वर्षों के बिखलाव से निकलने के बाद अपने स्वयं के अनुभव से जानते थे कि उस प्रकार की निरंकुशता के विरुद्ध सुरक्षा उनके नए संविधान का केंद्र बिंदु होना चाहिए। वे बुद्धिमान पिता थे, वे मेमने के समान थे, परंतु अंतिम पिता के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अजगर के समान बोलेगा। पितृगण बिखराव से निकले थे और पुत्र फिर से बिखराव में लौट जाता है। दोनों ही प्रसंगों में अत्याचारी वही है, पहली पोप शाही और अंतिम पोप शाही। नबूकदनेस्सर जो पहला राजा था और अंतिम राजा बेलशस्सर पर हुए न्याय का प्रतीक, लैव्य व्यवस्था 26:7 काल वाला विखराव था। नबूकदनेस्सर ने उसे भोगा, और जिस रात बेलशस्सर मरा उसी रात वो उसके समाधिलेख के रूप में दीवार पर लिखा गया। आरंभ में गणतांत्रिक सींग का प्रतीक उत्तर के राजा की दास्ता से उसका बच निकलना था, और उसके अंत में गणतांत्रिक सींग का प्रतीक उत्तर के राजा के द्वारा लाई गई बंधुआई है। रविवार का कानून वही उसी रात है जब वो बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में मर जाता है। इन चारों चित्रणों, बेलशस्सर, नबूकदनेस्सर और गणतांत्रिक सींग की शुरुआत और समाप्ति में, लैव्य व्यवस्था 26:25 वही प्रतीक है जो आरंभ और अंत दोनों पर प्रस्तुत किया गया है।
वो अल्फा और ओमेगा के हस्ताक्षर का प्रतिनिधित्व करता है।
विलियम मिलर द्वारा खोजी गई पहली समय की भविष्यवाणी लैव्य व्यवस्था 26 का 2520 थी। ये उस नींव का पहला पत्थर था जिसे यीशु ने मिलर के कार्य के माध्यम से रखा। ये वो पहली बुनियादी सच्चाई भी थी जिसे 1863 में एडवेंटवाद ने अलग रख दिया। जब मिलर के सत्य के सारे पत्थर नींव में रख दिए गए, तब वे सच्चाइयां हबक्कूक की दो पट्टिकाओं पर प्रस्तुत की गईं, जो 1843 और 1850 के अग्रणी चार्ट हैं। वे दोनों पट्टिकाएं परमेश्वर और उसकी नामित प्रजा के बीच के वाचा संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे 10 आज्ञाओं की दो पट्टिकाएं प्राचीन इसराइल के साथ वाचा का प्रतिनिधित्व करती थी।
लाओदिकियन एडवेंटिज्म के अंत में, जब रविवार के कानून के समय उसे प्रभु के मुख से उगल दिया जाता है, तो दीवार पर लिखावट वे दो पवित्र अग्रणी चार्ट हैं। ऐसे चार्ट जिन्हें वे पढ़ पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास के आरंभ में चेतावनी के संदेश से लाभ उठाने से इनकार कर दिया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका में 1837 का वित्तीय संकट एक जटिल घटना था, जो आर्थिक कारकों, नीतियों और सट्टेबाजी गतिविधियों के संयोजन से उत्पन्न हुआ था।
सट्टात्मक बुलबुला 1837 से पहले के वर्षों में भूमि और निवेश में सट्टात्मक उछाल आया, जो आंशिक रूप से देश के पश्चिम की ओर विस्तार से प्रेरित था। भूमि सट्टेबाजी, विशेषकर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में, के कारण भूमि की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ गईं और अत्यधिक उधारी हुई।
आसान क्रेडिट और सट्टात्मक उधारी। बैंक और वित्तीय संस्थान बड़े पैमाने पर क्रेडिट और ऋण प्रदान कर रहे थे, अक्सर पर्याप्त जमानत के बिना। क्रेडिट तक इस आसान पहुंच ने सट्टात्मक उन्माद को बढ़ावा दिया और वित्तीय अस्थिरता के जोखिमों को बढ़ा दिया। बैंकों का अत्यधिक विस्तार।
बैंक अपने संचालन का तेजी से विस्तार कर रहे थे और अक्सर वे अपनी उपलब्ध धातु मुद्रा, सोना और चांदी के समर्थन से अधिक मात्रा में कागजी मुद्रा, बैंकनोट जारी कर देते थे। इस प्रथा को वाइल्डकैट बैंकिंग कहा जाता था और इसके परिणामस्वरूप प्रचलन में अविनियमित और अविश्वसनीय मुद्रा की अति प्रचुरता हो गई।
जैक्सन की आर्थिक नीतियाँ। राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की नीतियों ने संकट को और गहरा करने में भूमिका निभाई। उन्होंने 1836 में स्पीसी सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत सार्वजनिक भूमि की खरीद कागजी मुद्रा के बजाय कठोर मुद्रा, सोना और चांदी में करने की शर्त रखी गई। इससे बैंकनोट को धातु मुद्रा में बदलने की होड़ मच गई, जिससे वित्तीय दबाव बढ़े और बैंक विफलताएं हुई।
अंतर्राष्ट्रीय कारक। संयुक्त राज्य अमेरिका में संकट पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार थी, में आई मंदी के कारण अमेरिकी वस्तुओं और निर्यात के लिए मांग कम हो गई। इससे आगे चलकर अमेरिकी व्यवसाय प्रभावित हुए और आर्थिक कठिनाइयों में बढ़ोतरी हुई।
घबराहट और बैंकों पर दौड़। मई 1837 में बैंक विफलताओं और ऋण संकुचन सहित वित्तीय झटकों की एक श्रृंखला ने निवेशकों और जमाकर्ताओं के बीच घबराहट पैदा कर दी। इस घबराहट ने बैंकों पर दौड़ की एक लहर को जन्म दिया और ऋण में गंभीर संकुचन ला दिया।
मुद्रा आपूर्ति में संकुचन। बैंकों के विफल होने और ऋण की शर्तें कड़ी होने के साथ अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति में उल्लेखनीय संकुचन हुआ। मुद्रा के इस संकुचन ने आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ा दिया और मंदी को और गहरा कर दिया। इन कारकों के संयोजन ने एक गंभीर आर्थिक गिरावट को जन्म दिया, जो बैंक विफलताओं, बेरोजगारी, उपभोक्ता खर्च में कमी और सामान्य आर्थिक अवसाद से चिन्हित थी।
भविष्य के लिए हमें किसी बात का भय नहीं है, सिवाय इसके कि हम उस मार्ग को भूल जाएं जिसमें प्रभु ने हमें चलाया है और हमारे बीते इतिहास में उसकी शिक्षा को। लाइफ स्केचेस 196।